मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم। सूरह मारिश की इन आयात पर कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से बल्कि शायद कई सालों से दर्श चल रहा है। मैं जब इस मस्जिद में आया तो मुझे आए हुए 10 और 8 तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं। तो मैंने ये दर्स जो शुरू किया था तो पहले 30वां पारा फिर 29वां पारा भी 29वां अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो मेरे जो तफसीर के लेक्चर कंटिन्यू सुनना चाहते हैं ना जो टू द पॉइंट हो वो मेरे चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस पे चल रहे हैं वो वहां सुना करें। उसमें टू द पॉइंट रुकू को लेके मैं चल रहा होता हूँ वो काफी ज्यादा हो गया है और उसमें तकरीबन 26 पारे हो चुके हैं। तो उसमें टू द पॉइंट सिर्फ कुरान की आयतों को हल किया है उसमें। ये तो चूंकि वाज़ो नसीहत का उनसर इसमें ज्यादा होता है तो एक आयत लेके फिर मैं उसको तफसील से जाता हूँ उसमें मैं। और शीश भाई सब सेट चल रहे मार्केट में नमाज के बाद मिले और शहरी क्या नाम है शाहनवाज भाई आप भी नमाज के बाद मिल लें। शाहनवाज भाई से मैं इसलिए मिल रहा हूं आप लोग को भी एक चीज बताता हूं। देखो अपने टाइम को बचाओ। दुनिया में बहुत से काम करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। बेढंगे तरीके से कोई काम करोगे ना तो कयामत तक करते ही रहोगे होगा ही नहीं। मेरी आदत है भाई एक दफा एक कपड़ा ले लो जिंदगी भर के लिए वो वही पहनो। अब ये तो पहने हैं ना नीले ये तो घर वालों ने पहना दिए वो तो नीले पीले घर वाले तो पहनाते रहते हैं। एक स्टैंडर्ड का आदमी अपना ड्रेस रखे और फिर टेंशन ही ना हो जिंदगी भर वही पहनता रहे। टेलर भी एक रखे जिंदगी भर फिर वही उसी से सिलवाओ। राशन की दुकान भी एक है हमारी 12-13-15 साल हो गए उसी से राशन आता है। तो क्या होता है कि भाई फिर वो आपका उससे एक रिलेशन भी बन जाता है। पैसे वक्त पे दे दिए नहीं दे दिए घर में राशन जाता रहेगा उधार वो तो मैं उधार करता नहीं दे ही देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये टेंशन से बच जाते हैं आदमी ये वहां से आएगा भाई ये तेरा हेडेक है। तो इन सब चीजों से इंसान का टाइम बहुत बच जाता है। अच्छा मेरे 3 घर तो बहुत अरसे से है ना 3 तो बहुत पहले से है मेरे। तो मैंने कंप्यूटर भी 3 घरों में रखा हुआ था अपने लैपटॉप पे काम करने के लिए ना जो अपना जामेतुर रशीद का या जो भी। हालांकि 2 घर साथ साथ हैं बिल्कुल इधर भी और एक ऊपर। वजह क्या है कि भाई अगर वहां काम करना है तो फिर इधर ना आना पड़े। अब उस पर खर्चा आदमी का और 2011 में मेरी को बहुत ज्यादा आमदन नहीं थी तो लोग कह रहे थे यार ये इसराफ कर रहे हो। तो भाई ये पैसा टाइम बचाने पे खर्च हो रहा है। टाइम बचाने पे पैसे अगर खर्च हो जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने जब भी मैं ये वाकया बताता हूँ ना एक साहब का वाकया बताता हूँ दीनदार आदमी कंप्यूटर की उनकी दुकान शॉप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके वो पैसे लेते हैं सिस्टम बेचते हैं। उनकी शॉप पे जब भी जाओ कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करवाना है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है नेट ही मरा हुआ चल रहा है 2-2 घंटे लग रहे हैं नेट ऐसा भाई क्या विंडो डाउनलोड करनी है 6 घंटे लग रहे हैं उसमें। तो मैं उनसे कहता था यार कोई नेट खानदानी किस्म का रखो और वो जो केबल होती है ना फाइबर केबल डलवा लो कॉपर की केबल डलवा लो, फाइबर केबल में रखल अच्छी होती है यार, वो खर्चा बहुत है। ओ भाई आप उधार लेके कर लो ये काम। ये लोग ये नहीं देख रहे होते कि कस्टमर जो टूट रहे हैं, अब आप अगर महंगा वाला नेट रख लोगे तो आप एक कस्टमर को जो एक घंटे में निपटाते हो, ऐसे चार कस्टमर एक घंटे में निपटा दोगे, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये एक हमारा कॉमन मसला है कि खोपड़ी इस्तेमाल किए बगैर काम किया जाएगा। जब भी काम किया जाएगा, काम करते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि ये ठीक तरीके से किया है कि गलत तरीके से किया। काम होने के बाद तलाकों में देख लो, आज ही एक साहब आए, तीन तलाकें देखे ना स्टैम्प पेपर पे अंगूठे शंगूठे लगा के दे दी, आके पूछने की हुई है कि नहीं हुई है। और फिर टेंशन में भी आ गए, मैंने कहा हो गई है, कह रहे हैं यार मैं तो दे तो दी है मैंने, लेकिन मैंने भेजी तो नहीं है बेगम को। मैंने कहा जब लिख ली तो बेगम को ना भेजो तो तलाक है, जब लिख ली तो हो गई, अंगूठे भी ठोकवाया हुआ है उसमें तो हो गई ना, फिर मैंने भेजी तो है ही नहीं। तो भाई जब लिख ली है तो हो गई, बस भेजना जरूरी नहीं है। अब ये काम पहले कर लेते ना, क्या ख्याल है? लिखने से पहले आ जाते, पूछ लेते कि इस तरह लिखूंगा हो तो नहीं आएगी। तो कौम का अलमिया ये है कि तीन तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं काम करने से पहले सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे। ये है अंग्रेज लोग। ये कौन है? अंग्रेज लोग है। दूसरा वो कौमें होती हैं जो काम करने के बाद सोचती हैं कि ये क्या हो गया। ये है देसी लोग जो दुनिया में, अंग्रेजों के अलावा जो देसी लोग हैं ना। तीसरे वो हैं जो ना काम करने से पहले सोचते हैं ना काम करने के बाद सोचते हैं, और काम का जब गलत रिजल्ट आए फिर भी नहीं सोचते, वो हम लोग हैं। यानी वो गलती है दोबारा भी हम इलेक्शन में देख लो ना। वैसे तो इलेक्शन में हमला आने से कुछ होता होता है नहीं, वो तो तकल्लुफ की बात है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो इंसान अच्छा ही सोचता है ना। तो इसलिए ये जो है ना, हर काम में पहले से आदमी सोचे, फिर उसमें गड़बड़ करे तो वो समझ में आता है। जैसे आपने एक प्लानिंग कर ली, उसके बाद भी आपसे उस प्लानिंग पे अमल नहीं हो रहा तो वो अमली कोताही है, वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। उसमें गलती में आपको पता चलेगा कि ये मेरी गलती है, ये तो इसका इलाज तो है कि सुस्ती को खत्म किया जाए। लेकिन बहुत से काम चुस्ती के साथ हो रहे होते हैं, गलत हो रहे होते हैं। हमने 10 साल स्कूल में गुजारे, मैट्रिक किया, आज हमें पता चलता है कि हम जिस डायरेक्शन में मेहनत करते थे ना, वो मेहनत की सिमती ठीक नहीं थी। रट्टे लगा लगा के फिजिक्स केमिस्ट्री याद करते थे, रट्टे लगा लगा के पूरे पूरे उर्दू के मजामीन याद करते थे, कितनी मेहनत की है। मैं तो नाइन्थ और टेंथ में ना रोड पे निकल जाता था किताब लेके रट्टे लगाने के लिए। दो महल्ले के दो चार लोगों ने देखा, बोला बहुत पढ़ाकू है भाई, बहुत पढ़ाकू। मेरा ऐसा रेपुटेशन बन गई थी, बहुत पढ़ाकू, इतनी मेहनत की थी आपकी सोच होगी। रट्टे लगाता था जाके मैं खूब, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था भाई। इससे नंबर तो अच्छे आ सकते, नंबर भी अच्छे नहीं आए उस तरीके से, मेहनत बहुत की, आउटपुट को बहुत अच्छा नहीं आया। बी ग्रेड से पास हुआ था मैं, बी ग्रेड मैट्रिक में। उस वक्त बी ग्रेड से पास भी बहुत कम लोग होते थे। आपको ऐसे मुझे पता है आप जो ए से हो रहे हो किस तरह से हो रहे हो, हमें पता है। तो मेरे यानी वो इज्जत हुई थी कि बी ग्रेड आया भाई मैट्रिक में। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी हमने मेहनत की थी, जो अल्लाह ने टूटा फूटा हमें दिमाग दिया था, उसमें ए प्लस आना चाहिए था। वजह क्या थी कि हमें बताया ही नहीं गया कि मेहनत किस सिमत में करनी है। और स्कूलों में ऐसा ही कबाड़ा हो रहा है, बच्चों की जिस तरह से मेहनत करवाई जा रही है वो रुख ही ठीक नहीं होता। फिर हम जब मदरसे में आए हैं ना, तो हमें पता चला है भाई किस तरह से मेहनत होती है। उसमें मेहनत कम है, आउटपुट उसका बहुत अच्छा है। अगर आप इजाजत है तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ताकि अगरचे मौजू से हट रहा हूं मैं, लेकिन ये बहुत जिंदगी गुजारने के लिए कुछ बहुत उसूल होते हैं अच्छे, जो आप उसमें क्या होता है। देखो मैं एक मिसाल देता हूं, एक बहुत बड़ा पत्थर हो, आपने उसको लुढ़काना है। एक लुढ़काने का तरीका यह है कि ई ई करके धक्का लगाना शुरू कर दो, आपसे पूरा जोर लगा दिया, नहीं हो रहा, महल्ले पड़ोस के 10 बंदे और लाए, लुढ़क ही नहीं रहा वो। मेहनत बहुत ज्यादा है, पसीना पसीना हो जाओगे, वो कमबख्त शायद आधा इंच हिले। इतनी मेहनत के बाद आउटपुट क्या है? जीरो है, 0.001 होगा। उसका एक तमीज से तरीका ये, किसी पढ़े लिखे से बोलो, वो लीवर का इस्तेमाल करो, एक लंबा सा रॉड लेकर आओ, लंबी सी, قوت کا بازو جس کو لیور کہتے ہیں نا, جتنا بڑا لمبا ہوتا ہے نا اس میں فورس کم ہو جاتی ہے. بھائی ہم جب کوئی اسکرو کھولتے ہیں, اور آسان مثال دیتا ہے, پہلے لیور رکھا آپ نے اور یوں لڑکایا پتھر لڑک جائے گا. اسکرو کھولنا ہے نا آپ نے, نٹ کھولنا ہے کوئی, تو نٹ کھولنے کا ایک طریقہ ہے پکڑ کے اس کو گھماتے رہو بیٹھ کے, خود گھوم جاؤ گے ہاتھ کی ہڈی نکل کے آ جائے گی. وہ نہیں, آپ نے ایک پانا لیا, پانے کو اس میں لگایا اور اس کا لمبا سا بازو ہے اس کو یوں کیا, فوراً کیا ہو جائے گا وہ, بڑے آرام سے کھل جائے گا وہ. تو یہ سسٹم صرف ان مادی چیزوں میں نہیں ہوتا, زندگی گزارنے میں بھی کچھ ایسے کامن اصول ہوتے ہیں کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے, محنت تھوڑی ہوگی, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا اور خوش بھی رہو گے. کچھ کام ایسے ہیں جس سے ڈپریشن میں, ہمارے جو اسکول کے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا, وجہ اس کی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی آؤٹ پٹ نظر ان کو پتہ نہیں چل رہا, تو ہمیں آ کیا رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہمیں پڑھنے کے بعد کچھ آ بھی رہا ہے. صحیح ہے نا, تو کہتے ہیں آ رہا ہے بس, کیا آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا, امتحان میں پتہ چلے گا کیا آیا. ابے امتحان میں تو امتحان دو گے نمبر کا پتہ چل جائے گا, تمہیں نالج تو ایسی چیز ہے جب آنا شروع ہوتی ہے مزہ آتا ہے. ہم جب مدرسے گئے ہم نے عربی پڑھنا شروع کی نا, عربی گرامر, تو ہمیں آنا شروع ہو گیا, قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, عربی کہیں لکھی بھی ہوتی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, اتنا مزہ آنا شروع ہو گیا. ابے ہمیں تو آ رہا ہے کچھ, ہمارے بچوں کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہمیں کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو موٹیویشن تھوڑی چماٹوں سے تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے. آج کل موٹیویشن کیسے مل رہی ہے, نہیں پڑھے گا نا, نہیں پڑھ کے دیا نا, دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں, باپ کی طرف سے یہ دھمکی, نمبر تیرے کم آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں تیری. یہ موٹیویشن کم مل رہی ہے, اسٹریس اور ڈپریشن میں بچہ بولو زیادہ جا رہا ہے. علم ایسی چیز ہے نا, اس سے جب جب انسان کو کچھ آنے لگتا ہے نا, اس میں اتنا مزہ ہے, دنیا میں اس سے زیادہ مزیدار کوئی کام ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جب آپ کو پتا چلتا ہے مجھے یہ چیز آتی ہے اس کو نہیں آتی, او بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے جب سوئمنگ سیکھی نا تو ہمیں آ گئی سوئمنگ. اب جو نئے نئے آتے تھے ہم بھرم شو بازی ہیں, تجھے سوئمنگ آتی ہے؟ نہیں مجھے آتی ہے. مجھے کیا ہے, بچے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں یاد ہے سوئمنگ پول میں ایک دفعہ ایک نیا آیا, اس کو نہیں آ رہی تھی, تو ایک ہمارے دوست نے اس کو تھوڑی سی سکھائی, اس نے یوں یوں ہاتھ مارے. اب جب تھوڑا صحیح ہاتھ مارتا ہے کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. کس نے بتایا؟ میں نے سکھایا. ہر ایک کو بتا رہے. تو اس سے بہرحال ایک علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کی برتری دوسروں پہ ثابت ہوتی ہے, کہ میں نے میں یہ جو ہے نا, یہ تکبر تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن نالجیبل آدمی, جس کے پاس نالج نہ ہو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا, میں تو بالکل لڑکا سا تھا, بچہ سا تھا, تو اب ہمیں تو بہت کچھ آ گیا تھا, لیکن سوسائٹی میں اس کا ابھی امپلیمنٹ شروع نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہم سوسائٹی میں تھے ہی نہیں, مدرسے میں ہی رہتے تھے, مدرسے سے آئے. مجھے یاد ہے ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک صاحب بڑا پیچیدہ مسئلہ وراثت کا لے کے آئے, ان سے وہ حل ہی نہیں ہو رہا, ابا کب مر گئے, فلانا کا یہ ہو گیا, بھائی کا یہ ہو گیا, بہن کا انتقال ہو گیا, فلانا ہو گیا, لائے. اب ہمیں آتا تھا تو میں نے وہ مسئلہ ان کا لکھ کے جواب دے دیا, حل کر دیا, پورا پوری کیلکولیشن کی ایسے اتنے. تو انہوں نے کہا یار یہ پوری کیلکولیشن کریں گے تو یہ پوری ڈیوائڈ ہو جائے گی. میں نے کہا آپ خود کر کے دیکھ لو, پڑتال کہتے ہیں نا کہ آخر میں اس کو جمع کرو. اس نے کر کے دیکھا, جواب آیا اور کہے یار یہ تو زبردست آپ نے حل کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا. تو مجھے یاد ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سی ڈائری لایا میرے لیے, کہہ رہے آپ نے اتنا بڑا میرا ہمارا گھر کا وراثت کا مسئلہ حل کر دیا. تو کہتے ہیں میں کہیں بھی مدرسے میں جاؤں یہی جواب آئے گا. میں نے کہا چیلنج ہے, پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں آئے گا, اور اگر کسی نے غلط جواب دیا تو میں بتاؤں گا بھی اس نے فالٹ کہاں کیا ہے. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یار سوسائٹی میں اس کا کیا ہے, ایک یعنی امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا اور ہمیں آ رہا ہے, تو شوق بڑھتا ہے اس سے. تو ہمارے جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں, کم بختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا ہے یہ, اس کا ریزلٹ کیا ہے, بس رٹے 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 لگا لگا کے. تو چند چیزوں کا خوب خیال کریں, جو میں بیان سے ہٹ کے چند باتیں کر رہا ہوں, جب موضوع آ گیا ہے تو پارسل کر دینی چاہیے. وہ ہم نے مدرسے میں سیکھی ہیں, اور وہ مدرسہ بھی دارالافتاء والارشاد مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا مدرسہ. سب سے پہلے ہم جب وہاں گئے तो हमें किताबों की भरमार नहीं थी। सबसे पहले तो बच्चा किताबों की भरमार से डरता है, 6 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट से तो बेड़ा गर्क हो गया उसका। देखते ही वो कहता है यार ये फिर ये वाला ट्यूशन की टीचर अलग, ये किताब अलग, ये किताब अलग। हमें सबसे पहले फोकस किया भाई आगे सारा जो हमारा 8 साल का निसाब है वो अरबी जबान में है, तो सबसे पहले फोकस किसको करना है? अरेबिक को। 1 साल मैंने अरबी की ग्रामर का एक पार्ट, 2 पार्ट है, एक को सर्फ कहा जाता है, एक को नहव। हमारे उस्ताद ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पूरे साल क्या पढ़नी है? सर्फ। सर्फ ये होती है कि अरबी के जो वर्ड है ना, अल्फाज, उन अल्फाज में क्या क्या चेंजिंग से क्या क्या मीनिंग चेंज होते हैं। सरफ जरबा जरबा जरबू जरबा जरबा ताजरबा जरब तादर तुंदर पीर तुमादरब तुन दरब तुदर नाजुरी बजरी बाजुरी गुजरी बजरी बताजुरी नाजुरी तजुरी तुमाजुरी तुजरी, ये पैसिव वाइज चल रहा है। ये इधरी इधरी वानी इधरी तजरी होती है, पूरे में 1 घंटा तक ये गर्दाने सुनाता रहूंगा, रट्टा लगा के याद करवाई हमें। फिर उनकी प्रैक्टिस, रट्टा तो लग गया भाई, अब कोई लफ्ज आता है तो आपको बताओ ये मीनिंग कैसे कैसे चेंज हो रही है। उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करवाई, 2-2 घंटे में हमारे टीचर मेरे साथ बैठे रहते थे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। वो रट्टा लगा लगा के वो हम सुनाते थे, फिर प्रैक्टिस कर, फिर मैं खुद भी प्रैक्टिस करता था मदरसे में। कैसे प्रैक्टिस करता था? बहुत सारी पर्चियां डाली, उसमें मुख्तलिफ चीजें लिखे, मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे, फिर उठा के देखा सामने आया तो फौरन उसका मीनिंग बताई मैंने खुद से, यानी अपने आप को ही मैं अपना इम्तिहान ले रहा हूं। 1 साल में कितनी, हालांकि इतनी लंबा चौड़ा इतनी सी किताब है उसकी, 25-30 सफे होंगे, 25-30 सफों को पूरे 1 साल में फोकस किया है, समझ रहे हैं? तो वो इतनी अच्छी तरह खोपड़ी में बैठ गई प्रैक्टिस कर करके, सिर्फ रट्टे नहीं, फिर उसकी प्रैक्टिस इतनी की इतनी की इतनी की। मुझे याद एकदम हमारे उस्ताद ने पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा सर पढ़ रहा हूं। उन्होंने फिर बड़ा मुश्किल सीखा पूछा, आपको भी बताऊं, उन्होंने कहा कुलना कैसे बना, मैंने कहा कुलना असल में कबलना था जरबना की तरह, जमा मोहनस गायबा का सीगा है तो वाव मुतहरिक माकबल मफतू लिहाजा वाव को अलिफ से बदल दिया तो कालना बन गया। अब इल्तिकाए साकिनैन हुआ है तो 2 साकिन एक ही कलमे में है और पहला साकिन मद है तो उसको गिड़िच कर दिया, हजफ कर दिया, कलना बन गया। अब चूंकि काला यकुलू ये नसर यंसुरु से है तो जब भी इस तरह इल्तिकाए साकिनैन में अलिफ को हजफ किया जाता है तो पहले उस पर जो है ना जम्मा आता है तो लिहाजा ये कुलना हो गया। उन्होंने कहा सही आ रहा है, उन्होंने क्या कहा तो ये पूरा सेटअप करके ना सर्फ मुकम्मल हुई हमारी। फिर अरबी ग्रामर का दूसरा पार्ट वो नहव शुरू किया हमने। अब हमें लगा ना कुछ आ रहा है, हमें 6 किताबें बच्चों को खोपड़ी में आएंगी क्या एक ही साथ, और अब मदारिस में भी यही सेटअप शुरू हो गया, एक साथ ही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो स्कूलों को कॉपी कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे अकाबिर का सदियों से तरीका था वो छोड़ रहे हैं। फिर नहव हमने पढ़ी, नहव में होते हैं पूरे सेंटेंस, उसको याद भी कर रहे हैं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर इतनी प्रैक्टिस उसकी, इतनी प्रैक्टिस करवाई, इतनी प्रैक्टिस। वो मुकम्मल होने के बाद फिर किताबों पे जब आए हैं ना तो भी वो प्रैक्टिस चलती रही है, यानी जो किताबें फिका की, हदीस की, कुरान की तफसीरें शुरू की है तो वो भी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रही। अच्छा, एक काम तो ये काम हो गया। दूसरा काम जब उसमें अरबी में हमें थोड़ा उबूर हुआ है, अब अरबी किताबें समझ में आएंगी, लेकिन एकदम से नहीं आना शुरू होती। तो जब अरबी की किताबों में अब 6 किस्म की किताबें, अरबी अदब, फिका, हदीस, कुरान और उसूल फिका, ये 5 किस्म के टॉपिक ये शुरू हुए, इनकी आसान किताबें। लेकिन बहुत अहम बात है, अब इसको समझो, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने कानून बनाया कि कोई भी किताब उस्ताद नहीं पढ़ाएगा। आप बोल रहे हो यार क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। टीचर को पढ़ाने की इजाजत, बोलो नहीं है ना, ना टीचर नहीं पढ़ाएगा। टीचर पढ़ाएगा तो इन किताब समझने की इनमें सलाहियत कैसे पैदा होगी, टीचर ने पढ़ाना ही नहीं है, इतनी सख्त पाबंदी लगाई हुई थी तो कैसे पढ़ेंगे भाई, खुद समझो। अरबी तुमने पढ़ ली है ना, ग्रामर पढ़ ली है, किताब आई सामने, हल करो इसको, क्या लिखा हुआ है समझो, खोपड़ी लड़ाओ। तो हम मगरिब के बाद बैठ जाया करते थे, जो कल सबक होगा ना उसको आज समझें, तो हम तो परेशान होते थे भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा करना यह है कि जितना खुद से समझ में आ जाए, 2 लाइनों में से 1 लफ्ज तो आएगा ना समझ में, जितना जोर लगा के जितना खुद से समझ में आ जाए वो आ गया, जो नहीं आ रहा ना पूरा जोर लगा लिया वो टीचर से पूछ लेना कल। तो एक लाइन दो लाइन होगी ना, क्या ख्याल है पहले दिन कितना सबक होगा? तो हमें याद है हमारे टीचर आए, हाँ भाई हमने इबारत पहले रात को समझी उसको, अच्छा जबर जेर पेश नहीं लगे हुए इबारत पे, तो आपने ग्रामर पढ़ ली, अब आपको इजाजत नहीं है। उर्दू किताबें उसकी शरह में तर्जमे देखने पर पाबंदी थी, आजकल तलबा ये भी कर रहे हैं मदारिस के, अरबी किताबें हैं उर्दू में तर्जमे छपे हुए हैं वो सामने रखा हुआ होता है। तो भाई उलूम तो अरबी में, आपको अरबी तो अरबी आपको आए बगैर जब इल्म आता है तो वही हशर होता है जो इंजीनियर अली मिर्जा का हशर हुआ है। जब तर्जमों के साथ आप मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ोगे, असल वो नहीं पढ़ोगे तो क्या हशर होगा आपका? तो यही कि हदीस का तर्जमा आप गलत कर रहे होते हो, आपको ये नहीं पता होता ये तर्जमा भी ठीक है कि नहीं है। कुरान की आयतों के गलत तर्जमे, जो खुला में गलत तर्जमे किए हैं, इसलिए तो किए हैं आती इसके, तो भाई एक एक साल दो दो साल मेहनत करनी पड़ती है अरबी सीखने के लिए, और इतना टाइम कौन लगाएगा आजकल। तो अब क्या है कि अब समझो, अब क्या है कि भाई अब आपने ये खुद पढ़नी है, उस्ताद को आप बताओगे, उस्ताद का काम है सिर्फ ये चेक करना कि सही कह रहे हैं कि गलत। तो अब हमें पहले दिन तो बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि ग्रामर पढ़ते ही आप थड़ 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 किताबें थोड़ी पढ़ना शुरू कर देते हो, किताबों की प्रैक्टिस तो अलग होती है। अब पांच किस्म के टॉपिक हमारे पहले, यानी जब सर्फ नहव मुकम्मल हुई है तो पांच टॉपिक शुरू हो गए, एक कुरान का तफसीर, नंबर दो हदीस, नंबर तीन फिका, नंबर चार उसूल फिका। उसूल फिका अलग चीज है, फिका अलग चीज है, उसूल फिका भी आजकल के ये लोगों ने पढ़ा नहीं होता। उसूल फिका कहते हैं वो कौन से उसूल हैं कि जिनको सामने रखकर मुज्तहिदीन ने कुरान और हदीस से मसाइल निकाले हैं, उनके भी उसूल और जाबते हैं। ऐसे नहीं कि बुखारी में हदीस आ गई तो फौरन फतवा देना, ना 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 ना। खबर मुतवातिर क्या होती है, खबर वाहिद क्या होती है, जब दोनों में टकराव होगा तो किसको तरजीह दी जाएगी, पूरे उसूल हैं ये सब अरबी में। तो अब क्या किया, ये बच्चों को इस स्टाइल से पढ़ाओ, देखो वैसे साइंटिस्ट पैदा होंगे तुम भूल जाओगे, ऐसे बड़े बड़े मुहक्किक पैदा होंगे। तो इसमें शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, आखिर में स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। हम जो चला रहे होते हैं शुरू से ही स्पीड तेज रखते हैं और आखिर में नतीजे तक पहुंच ही नहीं पाता, वो धक्के वो बेसाखियों से ही चलता है सारी जिंदगी। तो अब क्या किया, हमें तो अब बड़ी मुश्किल लग रही है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं जितना कर सकते हो करो। तो पांच छह किताबें जो भी टॉपिक थे, किताबों की भरमार नहीं थी, जो टॉपिक है भाई ये पांच चीजों में, आलिम का मतलब होता है पांच चीजों में, अरबी अदब और कुरान हदीस फिका और उसूल फिका, इन पांच चीजों में जिसको महारत हो जाए उसको आलिम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, आलिम। तो अब क्या हुआ जी, हमने शुरू कर दिया, मुझे हमें तो पहले दिन वो अरबी अदब की किताब आई, समझ में नहीं आ रहा क्या है, थोड़ा सा जोर लगाया आधा पौना घंटा एक घंटा, मगरिब से मुताले के लिए बैठते थे ईशा तक, ईशा के बाद नमाज होती, ईशा में नमाज होती उसके बाद, बल्कि नमाज से पहले खाना होता था, ईशा की नमाज थोड़ा देर से होती थी, तो नमाज से पहले खाना खाया, नमाज पढ़ी, थोड़ा खाना वाना हल्का हो जाता था उसमें, तसल्ली से नमाज के बाद फिर बैठ जाते थे रात 11-12 बजे तक, मुताला चलता था अगले दिन के लिए, और ऐसा माहौल होता था खामोशी का, सारे बैठ के स्टडी कर रहे होते थे। तो अगले दिन फिर सुबह फजर के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो अब देखो कैसा बेहतरीन सेटअप, रात को आपने स्टडी की, मुताला किया, अगले दिन सुबह उस्ताद के सामने बेशक दो लाइनें पढ़ी आपने, तो ये कंटिन्यू जब चलता है ना, एक दो महीने के बाद आपको खुद किताब समझ में आना शुरू, टीचर की जरूरत ही नहीं रहती आपको, आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सलाहियत बढ़ती है, अरबी अदब में भी, उसूल फिका में भी, फिका में भी आहिस्ता आहिस्ता सलाहियत बढ़ती है। वो किताब जिसको आप इतना मुश्किल समझ रहे थे, साल के आखिर में हलवा हो जाती है, छह छह सफे आप पढ़ रहे होते हो। तो फिर क्या होता था, फजर के बाद इस तरह से हमने उस्ताद के सामने लेक्चर डिलीवर किया, उस्ताद ने सुना, जो चीज कोई गलती है वो बता दी, जो समझ में नहीं आई वो एक्सप्लेन कर दी। फिर क्या हुआ जी, 11:30-11:15 बजे तक हम क्लासेस के बाद हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की मजलिस होती थी आधा पौना घंटा, उसके बाद खाना हुआ, जोहर की नमाज पढ़ी, लंबे हो गए, बल्कि नहीं सॉरी जोहर से पहले खाने के बाद क्या कर लिया हमने, कर लिया, दिमाग फ्रेश हो जाता था, एक घंटा सो के हम उठते थे, नमाज पढ़ते थे, उसमें फ्रेश हो जाते, जिनको सुट्टा लगाने की आदत है, चाय मुझे आदत थी, चर्सियों के होटल में छप्पड़ में जाता था, कड़क सी चाय, गंदे अल्लाह माफ फरमाए वो चर्सी वर्सी बैठे होते थे, लेकिन मजबूरी थी हमारी, वो चाय का जायका अब तक कभी आया है नहीं, तो चोरी छुपे जाके चाय पीने का अलग ही मजा है। खैर वो चाय पी के आते, दिमाग फ्रेश, अब क्या करना है, अब जोहर से असर तक जो हमारे पास, एक तो फ्रेश हो चुके होते थे ना, नींद भी पूरी हो गई, चाय भी पी ली, दिमाग क्या हो गया, बिल्कुल तरोताजा। आजकल ये कैलूला ही नहीं है, सुबह से गधे की तरह शुरू होगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, 4 बजे आ रहा होगा बौखलाया हुआ। क्या किस तरह आ रहा होगा? बौखलाया हुआ आ रहा होगा। हमारे चेहरे ऐसे फ्रेश हो जाते थे ना, जोहर में खाने के बाद 1 घंटा सोने के बाद उठते थे, फिर नमाज की अपनी एक रौनक है, ऐसे फ्रेश हो जाते थे, बिल्कुल तरोताजा। जोहर के बाद फिर हम ये करते थे कि जो दिन में पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना। रिवाइज करने का तरीका, 4-4, 5-5 की जोड़ियां बना ली, यानी जो चीजें पढ़ी है ना उसको अपनी जबान से हमने रट्टा वट्टा नहीं है दोहराना है कि ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया वगैरह वगैरह, उससे वो और अच्छी तरह से दिमाग खोपड़ी शरीफ में बैठ जाता था। वो असर के बाद फिर जो है छुट्टी होती थी, हजरत का बयान होता था, अक्सर हम हजरत का बयान सुनते, आधा पौना घंटा घूमे फिरे, वो एक स्टेशन था वहां बैठ जाते थे, कभी जाके ट्रेन गुजरी इधर ठंडी रखते थे, वो हो जाती थी ना लोकल ट्रेनें, वो खैर वो बंद हो गई थी उसी दौर में बंद हुई थी। खैर तो फिर ये मगरिब के बाद फिर ये सेटअप शुरू, तो इतना बेहतरीन स्टाइल था, इतना बेहतरीन और सुकून का हिसाब किताब था। मुझे याद एक दफा मेरे बड़े भाई आए मिलने के लिए हमसे, मगरिब के बाद आए तो सब मुताले में मशगूल हैं, चंद घंटे बैठे, उन्होंने कहा यार मैंने जिंदगी में ऐसा सुकून कहीं देखा नहीं है, इतना सुकून शांति का माहौल जो है ना कहीं नहीं देखा। हमारी यूनिवर्सिटियों का है ये माहौल, पढ़ाई का अजीब सुकून वाला माहौल होता है, उसमें तलबा तहज्जुद भी पढ़ते थे, कुछ फजर से पहले मुताला शुरू कर देते थे। तो यूनिवर्सिटियों के मैं तो फिर जब बाहर निकला हूं ना, तो मैंने जब देखा है कि लड़कों के चेहरों पे बौखलाहट, नींदें ही पूरी नहीं हो रही, सो रहे हैं तो पोस्टियों की तरह सोते चले जा रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं सो के, 2-2, 3-3 बजे तक, अबे तू क्या पढ़ेगा, फिर क्लास में जाके बैठे हुए सारा जोर टीचर ही पढ़ा रहा है, तो आपकी थोड़ी सलाहियत पैदा होगी, सुनने से सब कुछ थोड़ी आता है, बोलने से आता है। तो फिर रात को दोबारा उसका मुताला किया, फिर इम्तिहान से 1 हफ्ता पहले असबाक बंद हो जाते थे, भाई अब आपने पूरे साल जो पढ़ा उसकी सिर्फ तैयारी करनी है। उस तैयारी का क्या तरीका है वो भी आपको बता दूं, नहीं आई मेरा ख्याल है बात, आपने क्या किया, रोज जो पढ़ रहे हो ना उसका 2 लाइनों में खुलासा, बेशक वो उर्दू में लिख लो या इंग्लिश में जो आपको आसान लगे, 2 लाइनों में उसका किसी रजिस्टर में खुलासा, क्योंकि इम्तिहान में पूरी पूरी किताबें नहीं याद रहती, रट्टे लगाए जाते हैं, 2-2 लाइनों में खुलासे लिखते रहो बैठ के, वो इम्तिहान के आखिर में बड़े आराम से रिवाइज हो जाता है और 100 में से 100 नंबर लाजमी आएंगे आपके। तो इस तरीके से इंसान जब पढ़ता है मेहनत उसकी कम होती है, फ्रेश भी रहता है, सेहत भी ठीक रहती है, और उसको पता चल रहा होता है यार पहले तो मेरे लिए किताब इतनी मुश्किल थी, एक लफ्ज समझ में नहीं आता था, अब मेरे लिए आसान होती चली आ रही है। और मजीद फायदा क्या, जैसे ही मैं मदरसे से फारिग हुआ हूं मैंने फौरन किताबें पढ़ाना शुरू कर दी है, यानी ये जो मेथड ऑफ लर्निंग है ना ये वाला, इसमें टीचिंग की सलाहियत पैदा होती है आपके अंदर, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। फिर मैंने मदरसे में वो किताबें भी पढ़ाई हैं जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी, वजह उसकी है कि पढ़ पढ़ के वो आ तो गई ना समझ, यानी उसको समझने की सलाहियत तो पैदा हो गई ना, तो अब किताब समझने की सलाहियत पैदा हो गई है, अब आप वो किताब भी पढ़ा सकते हो जो आपको नहीं आती, तो कोई बात नहीं, रात को मुताला करो, उसका स्टडी करो, समझो, आप पढ़ा दो जाके। तो मैंने ऐसी बात मुश्किल किताबें मदरसे में पढ़ाई हैं जो मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो मुझे जब दी गई तो उन्होंने कहा ये किताब पढ़ी आपने, मैंने कहा नहीं, कहने पढ़ा सकते हैं, मैंने कहा मुताला करके पढ़ा लूंगा, तो रात को मैं स्टडी करता था, मुताला करता था, समझ में आ जाती, सुबह जाके पढ़ा देता था, तो मुताला करके तो आ जाएगी समझ में। लेकिन तलबा की जो आजकल हालत चल रही है, किताब मुताला करके स्टडी करके समझ में आती नहीं है, कहते पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वही आएगा वही पुराने टीचर बैठ कर घंटा घंटा समझाएंगे बैठ के। तो ये जो बेड़ा गरक, ये जो हमारा सिस्टम स्कूलों में चल रहा है, इसमें मुहक्किकीन पैदा नहीं होंगे। अगर कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा हो रहे हैं तो आप इनकी हिस्ट्री देखें, उन्होंने इसी स्टाइल में पढ़ा है, खुद से पढ़ा है उन्होंने, स्कूल की मेहनत नहीं है, और बड़े बड़े स्कूलों से कभी धोखे में ना आओ। ये जो लोग कहते हैं फलां स्कूल का रिजल्ट हमेशा ऐसा है कि टॉप 10 यहीं से पैदा होते हैं, भाईजान ये स्कूल का बिल्कुल कमाल नहीं है, वो कमबख्त इम्तिहान के वक्त लेते ही उन बच्चों को है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहीन होते हैं या पहले से उनकी बड़ी अच्छी पोजीशनें होती हैं, वो सारी क्रीम लेके उनकी फिर अपनी मेहनत होती है और अपने खाते में डाल देते हैं, और गवर्नमेंट के सारे थके हुए लोग कहां जा रहे होते हैं, हालांकि बाद गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर भी बड़े काबिल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं आउटपुट निकल ही नहीं सकता ही, जो हमारे पास जिस टाइप के लोग आए हैं इनमें वो सलाहियत ही नहीं है, समझते नहीं हो बात को, तो पढ़ना हो ना इस साल में। अब हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है भाई, आगे सारा सिलेबस इंग्लिश में है, बहुत सी किताबें उर्दू में है, तो इंग्लिश और उर्दू में तो पहले महारत पैदा करो, वो होती नहीं है। बच्चा ऐसा बौखला जाता है कि उस समझ में ही नहीं आ रहा होता यार ये क्या है, तो वो कहां से समझ में आएगा उसके, उसको इंग्लिश ही नहीं आती है, उसको उर्दू ही नहीं आती है, दोनों चीजों से वो फारिग होता है, तो फारिग ही रहता है फिर सारी जिंदगी, तो पागल हो जाता है फिर थोड़ी देरों में, फिर रट्टा लगाता है, फिर कहता है किस अजाब में डाल दिया यार, तो उससे ये उम्मीद लगा लेंगे साइंटिस्ट पैदा होंगे, फिर वो पानी से चलने वाली मोटरें ही ईजाद करते हैं फिर वो क्या ईजाद करते हैं, छोटी मोटी चीजें तो फिर ईजाद, जैसे हमारे जो आमिल है ना, आमिल आम डॉक्टर जो है ना, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो वो मे बी करके हर चीज को बयान करेगा, कैंसर कहते कोशिश करते हैं शायद ठीक हो जाए, गुर्दों में मसला आ गया कोशिश करते हैं उम्मीद है अल्लाह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं होता, कैंसर बाएं हाथ का खेल है, और फिर आमिल लोग चूंकि उनको कुछ भी नहीं आता लिहाजा वो सबसे बड़े फेंकू होते हैं, उनके पास हर मसले का ले, बीवी भाग गई है वो ले आएगा, घुटने में दर्द है फूक मारेगा वो, इलेक्शन में यूं करके सीटें उधर जा रही फूक मारेगा यूं हो जाएगा, वो हर चीज जिसके पास हर चीज का इलाज हो तो समझ लो उसके पास किसी भी चीज का इलाज नहीं है। मेरे पास तो सब चीजों का इलाज नहीं है, लोग मुझसे रहा, आज एक बंदा आया बेचारा परेशान था कि मैं फलानी से शादी करना चाहता हूं, उसके अब्बा नहीं मान रहे, तो मैंने कहा मेरे पास इसका इलाज नहीं है, मैं ये कर सकता हूं कि उसके अब्बा से सिफारिश कर देता हूं, ये मेरे बस में है, फिर भी ना माने तो उनकी मर्जी, तो उसने कहा फोन करें, मैंने कहा इतना बेवकूफ नहीं हूं कि किसी के अब्बा को मैं फोन करूं आपकी बेटी की फला से शादी करा दें, अगर वो अब्बा मुझसे बात करने के लिए एग्री हैं पहले उनको बताओ, वरना आदमी गैरत में आता है, मेरी बेटी का मामला है तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो भाई, गुस्सा आएगा उसको, बोलेगा मैं मेरी बेटी है, और कह रही नहीं वो आपसे बहुत अकीदत है उसको, मैंने कहा जितनी भी अकीदत हो किसी की बेटी के मामले में इंटरफेयर करना ये अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है, अब्बा अगर मुझसे राबता करने पर राजी हैं उनसे बात कर लो, अगर वो फोन करके मुझसे बात पे राजी हैं तो मैं पूरा जोर लगा लूंगा ताकि तुम्हारी शादी हो जाए, पूरा जोर लगा लूंगा, तो सिफारिश कर दूंगा जो ये किसी के मैं काम आ जाऊं, मैंने कहा मैं घर जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया चलें ऐसे पर ये तो ठीक है, मैंने कहा वो बुलाएं, ऐसे थोड़ी किसी के घर में आदमी घुस जाएगा और मैं आपकी बेटी की इससे शादी कराने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं, तो मैंने कहा वो मुझे कहें कि मैं उनसे कहूंगा मैं इस सिलसिले में आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो आपके घर आके आपसे बात करता हूं, करना ना करना आपकी मर्जी है लेकिन बात तो करना, मैंने कहा इतनी कुर्बानी में हालांकि मैं जानता नहीं उस बंदे को, लेकिन यार अगर किसी की हो जाए हमारे जरिए तो अच्छा है यार, खुश हो जाएगा, किसी इंसान के काम आना चाहिए, तो और जब बातचीत करेंगे हो सकता है कोई ऐसा फॉल्ट बता दें, मैं कहूंगा दफा हो यहां से भाई, बाद दफा ऐसे फॉल्ट होते हैं तो वो तो मैं सिफारिश कर लूंगा जो भी होगा जाके, तो जो हमारे इख्तियार में है भाई हम वो कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। फिर मैंने अपनी मिसाल दी, मैंने कहा कितनी जगह से हम खुद रिजेक्टेड हैं, हम अपनी नहीं कर सके वहां पे तो आपकी कहां से कर दें, तो जिस जो सब आमिल लोग सबकी शादियां भी करा सकते हैं, आमिल लोग सब बीमारों का इलाज भी कर सकते हैं, बे औलादों को औलाद भी दे सकते हैं, फिर भी ये तौहीद परस भी हैं, कमाल की बात है इनकी तौहीद, ये वो वाला तकवा है जो कुत्ता जो है ना, किसी ने पूछा तू टांग उठा के पेशाब क्यों करता है, उसने कहा छींटे ना पड़ जाएं, गटर का पानी पिएगा नापाक नहीं होगा, हर वक्त गंदगी में कलाबाजियां खाएगा नापाक, तकवा आएगा टांग उठा के पेशाब करने में कि छींटे ना पड़ जाए, तो वो बीबी वो क्या है बीबी तमीजा का वजू है, इनका तकवा टूटता ही नहीं है, तो आमिलों की भी तौहीद ये गैब की खबरें भी बता रहे होते हैं, फिर कहा जाए कि ये तो शिर्क है, कहते हैं भाई असल गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, हम गैब का दावा नहीं करते, बस कुछ उलूम है अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं, तो इसी को तो गैब का इल्म बोलते हैं, कुछ उलूम दिए हुए वो हम बताते रहते हैं, तो इनका तकवा बीबी तमीजा के वजू की तरह है, बीबी तमीजा को नमाज नहीं पढ़ती थी, मस्जिद के मौलवी साहब ने कहा क्यों नहीं पढ़ती, उसने कहा वजू ही नहीं आता, उन्होंने वजू करा दिया उसको, कब तो पढ़ेगी ना, उसने कहा हाँ पढ़ूंगी मैं, 10-15 साल के बाद इमाम साहब का दोबारा वास्ता पड़ा, बीबी तमीजा से नमाज पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से आप वजू करा के गए हैं नमाज पढ़ रही हूं, तो वजू करती है, कहती वो तो आपने करा दिया था ना, तो बीबी तमीजा के इस दौरान बच्चे भी हो गए, वुजू नहीं टूटा। तो ये आमिलों कभी तौहीद भी नहीं टूटती। ये जितने इल्म गैब के दावे करते रहे संग दिल महबूब आपके कदमों में, ये तो बुतों के बारे में इतना कायल नहीं थे मुशरिकीन मक्का जितना आजकल ये लोग रूहानी आमिलों के बारे में कायल हो गए, मगर इनका तकवा और तौहीद टूटती नहीं है। ऐसी पक्की तौहीद है इनकी, कुछ भी कर लो ये फिर भी मुवाहिद ही रहेंगे। तो खैर हम कहां से कहां चले गए, तो स्कूलिंग सिस्टम में भी ये खराबी है, तभी मैं होम स्कूलिंग का कायल हूं। मैंने अपने 2-3 बच्चों को तो स्कूल से निकाल लिया है, टीचर लगा दिया घर में, और बच्चियों के बारे में भी मैं इसका कायल हूं, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। कोई रिलायबल टीचर मिले तब, वरना ऐसा ना वो बेड़ा ही गर्क करके चला जाए। और बच्चियों के लिए भी ऑनलाइन टीचिंग आजकल कामयाब है, तो फीमेल टीचर पकड़ लो जो अच्छी जानने वाली हो, ऑनलाइन पढ़ाओ उनको, बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। स्कूल में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है आना, स्कूल के कपड़े इस्तरी हो रहे हैं, नाश्ता तैयार हो रहा है, बच्चों के बूट पॉलिश हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आधा पौना घंटा इसमें लगा लो, फिर वहां बैठ के टीचर सलाम दुआ और हेलो बच्चों कैसे हो, तुम ठीक हो, तुम कल क्यों नहीं आई थी, अच्छा टोपी करा रही हो, तुम क्यों बचाओ, इसमें आधा घंटा लगा लो। और फिर उसके बाद होमवर्क ही होमवर्क रहता है, होमवर्क पता नहीं क्या बैठ के। वो 4 साल तो बच्चों ने हमारे कलर के डब्बे जाया किए हैं, केले में पीला रंग हो रहा है, सेब में लाल रंग हो रहा है, और फलाना हो रहा है येलो डे, और पता नहीं कौन सा डे, बिला वजह के यार इतने डे मना मना के। हमें भी येलो रेड का, हमने तो कुछ नहीं पता था येलो डे क्या होता है, हमें फिर भी बचपन से येलो का पता चल गया कि पीला किसे कहते हैं, नीला किसे कहते हैं। खैर खर्चा भी दबा के होता है, वही फीस आप ट्यूटर को दे दो यार, डबल फीस दे दो फिर भी बचत होगी। फिर इनके यूनिफॉर्म भी उसी स्कूल से लो, वो अलग उनका बिजनेस है, किताबें भी उसी स्कूल से लो, वो अलग उनका बिजनेस है। फिर आज फलाना डे है तो डिमकाना डे है, और फिर छुट्टियां, कायदे आजम डे, अल्लामा इकबाल डे, और मजदूर डे, और अल्लाह भला करे हड़ताल है, इतनी बीसियों किस्म की छुट्टियां भी। तो ये जो हमने मदरसे में पढ़ा ना, ये असल में होम स्कूलिंग वाला सेटअप ही था, लेकिन टीचर इसके लिए खानदानी हो तो ये काम करो, वरना स्कूल ही ठीक है, वरना ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बहुत तेज स्पीड हो जाती है बच्चों की, ये इतना लंबा 10 साल जो मैट्रिक में लगते हैं, ये 4 साल की बात है, 3-4 साल में ये हो जाएगा, जो 10-10 साल हम बच्चों के जाया। और अमेरिका कनाडा में ही ऐसा ही है, वहां मैं अमेरिका में लॉस एंजलिस जो है ना, लॉस एंजलिस नहीं कैलिफोर्निया में, वहां एक मौलाना साहब मिले मुझे, बिल्कुल स्टाइल भी मौलाना वाला, वो नाराज ना हो जाए कहीं, यानी देसी बिल्कुल, कोई बुराई में नहीं कह रहा, बिल्कुल देसी, कोई देख के कह नहीं सकता ये बंदा लॉस एंजलिस में पैदा हुआ है। इंग्लिश तो उनकी मकामी है जबान, इतनी डिग्रियां उनके पास, आलिम भी है और डिग्रियां भी। मैंने कहा यार, और फिर पूरा गेटअप इस्लामी, क्योंकि वहां जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके बिगड़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है, वहां के गवर्नमेंट के स्कूल मुलहिद हो जाते हैं बहुत सारे, सारे नहीं होते लेकिन बहुत सारे बिगड़ जाते हैं, जिना में पड़ जाते हैं, गलत तो ओपन है सब कुछ। अभी तो वहां स्कूलों में होमोसेक्सुअलिटी बड़ा मसला बनी हुई है, तो बच्चों को बाकायदा बहुत से स्कूलों में तरगीब दी जा रही है इसकी, तो वो बाकायदा अपने नक्शे कदम पे बाप दादा के दाढ़ी वाड़ी नमाज टोपी पगड़ी। मैंने कहा भाई आप पढ़े लिखे भी हो और आपने इस माहौल में अपने आप को बचाया कैसे, कहते हैं होम स्कूलिंग। कह रहे शुरू से ही हमारे माँ बाप ने हमें स्कूल में ही नहीं भेजा और होम स्कूलिंग को फोकस किया, घर में टीचर आता था। तो मैंने कहा अमेरिका में इसकी इजाजत है, तो उन्होंने बताया अमेरिका में एक अच्छी आदत बात यह है, एक लॉ कि हर स्टेट का अलग लॉ है, तो आप अपने हिसाब से उस स्टेट में रह सकते हो। उन्होंने कहा लॉस एंजलिस का लॉ यह है कि अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ना भेजें, होम स्कूलिंग के लिए खुद गवर्नमेंट टीचर का इंतजाम करेगी। कह रहे मेरे लिए गवर्नमेंट ने टीचर का इंतजाम किया था, वो टीचर मुझे घर आके पढ़ाता था और सारे कोर्सेज मोर्सेज घर बैठ के किए उस बंदे ने। ये हर स्टेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ने बैलेंस रखने के लिए ना तो कुछ ऐसा है कि अब लॉस एंजलिस में टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा ना सारे बिस्तर उठा के बोले हम लॉस एंजलिस जा रहे हैं फ्री फोकट की पढ़ाई होगी, वो फ्री फोकट की होती है लेकिन वो टैक्स से वो पूरा कर रहे होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। फिर रिहाइश वहां बहुत महंगी है, तो इस तरह से। लेकिन देखो होम स्कूलिंग में क्या कुछ पढ़ ली है वो, और अपने मजहब और दीन का भी उन्होंने कायम रखा। तो खुलासा मेरे भाई बात का ये निकला कि पढ़ाई हो या कोई भी दुनिया में काम हो, खोपड़ी इस्तेमाल करके हो तो फिर सही होता है, फिर उस खोपड़ी पर अमल ना हो तो एक अलग बात है, वो तो हम 100% कौन किस चीज पे अमल करता है भाई। प्लानिंग तो हो ना, फिर उस प्लानिंग में 10 चीजें गड़बड़ भी होती हैं। इसकी एक मिसाल देके बस मैं अपने असल आज के जो बयान पे आता हूं, مثال اس کی یہ دیکھو, کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک بڑا جلسہ کیا علماء نے نا کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اس جلسے میں بدنظمی ہوئی تو کسی نے آ کے شکایت کی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے کہ جلسہ تو بڑا زبردست تھا لیکن بدنظمی بہت تھی. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, نظم تو تھا نا. کیا مطلب؟ بدنظمی بھی نظم کی ایک قسم ہے. یعنی کام تو ہو گیا نا, بھونڈے طریقے سے ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھونڈے طریقے سے ہو گیا لیکن کام جو جلسے کا جو اصل ہدف تھا, جو ٹارگٹ تھا, وہ تو پورا ہو گیا نا. تو ہم جب کوئی پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں, کام میں ڈنڈی مار لیتا ہے انسان. اس کی مثال ایسے, آپ نے پلاننگ کی کہ میں نے پشاور جانا ہے, بغیر پلاننگ کے بوریا بستر لے کے نکل گئے گھر سے پشاور کی طرف رخ کر کے. کئی مہینے لگ جائیں گے, شاید پشاور نہیں پہنچ پاؤ گے آپ. کیا خیال ہے؟ کیونکہ پلاننگ کے بغیر منہ اٹھا کے جا رہے ہو. کوئی رکشہ آیا, کبھی اس میں بیٹھ گئے, ڈبلیو آر ایم میں بیٹھ گئے, جو بھی ادھر کو جانے والی چیز ہے اس میں لٹک گئے. صحیح ہے نا؟ اس طرح سوراب گڑھ پہنچے تو دیکھا ایک بس ادھر حیدرآباد کی طرف جا رہی, پیچھے وہاں لٹک گئے. تو پہنچ تو ایک نہ ایک دن جاؤ گے, اور یہ بھی ممکن ہے راستے میں ہی بڑھ جائے پروگرام آپ کا. لیکن پلاننگ کی آپ نے اپنی جیب دیکھی, یار جہاز کا ٹکٹ افورڈ کر سکتا ہوں تو جہاز, ٹرین کا تو ٹرین. تو اب اس میں عین ممکن ہے کہ آپ ٹرین راستے میں خراب ہو جائے, یا آپ ٹائم پہ پہنچ نہیں پائے, وہ ٹرین نکل گئی, اگلی ٹرین سے جانا پڑ گیا. تو سستی کی وجہ سے, کم ہمتی کی وجہ سے کچھ نقصان تو ہوگا, لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا جو پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تبھی جو لوگ صحت کی پلاننگ کرتے ہیں نا, ہم نے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ ایکسرسائز کرنی, یہ نہیں کرنی, وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پلاننگ پہ پورے اتر نہیں رہے ہوتے. تو کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہوگا. نا 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 نا, نا. پلاننگ کر کے بھونڈے طریقے سے کام کرنا, یہ اس سے بہت ہزار گنا بہتر ہے جس میں وداؤٹ پلاننگ آپ کام کرنا شروع کر دو. یہ اس سے ہزار گنا بہتر ہے, کیونکہ اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ طریقہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا, پڑھائی کے معاملے میں خاص طور پر اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. آج کل بہت صلاحیتیں برباد ہو رہی. پاکستان میں جو کھوپڑیاں پائی جاتی ہیں, یہ انگریزوں کے پاس یہ کھوپڑیاں نہیں ہے. میم سے پتا چلتا ہے جو کھوپڑی اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے. ابھی دیکھو کل ایک بڑی زبردست عاملوں کے بارے میں میم آئی ہے, بہت زبردست, مزہ آیا. ایک بندہ عامل کے, اور یہ آپ لوگ بھی کیا کرو, کسی اور کا بنیان عامل کے پاس لے جایا کرو. یہ کیا لوگوں نے یہ کیا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھنا کسی اور کا لے جاؤ بنیان, نہ سونگا دو. وہ سونگ کے کہتے اس پہ تو اتنے جن ہیں. انہوں نے کہا حضرت اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بیمار تو یہ ہے, بنیان تو میں نے کسی اور. یہ عاملوں سے تجربہ کرو, یہ ایسے ہی ہوگا. ہاں کوئی یہ میرے اس بیان کے بعد ہوشیار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو وہ میم کسی نے بنائی بڑی زبردست کہ عامل کے پاس ایک لڑکا آیا کہ بھائی میں بہت پریشان رہتا ہوں, یہ ٹینشن ہے. اس نے کہا اپنے گھر کی مٹی لے کر آ گیا. یہ عامل نے مٹی کو سونگا اور بولا بھائی تیرے تو مس, تو پڑوسیوں کا ہے, تو اپنے ابا کا ہے ہی نہیں, مٹی بتا رہی ہے. اور وہ بھی پڑوسیوں کا ہے, فلانے کا بھی نسب ٹھیک نہیں ہے, اور جس گھر کی یہ تو آیا ہے نا, اس مٹی لایا ہے, تو یہ تو تیری اما نے تو خیانت کی ہے, تو ادھر کا ہے ہی نہیں. وہ بچہ, وہ لڑکا ہنس رہا ہے. عامل نے کہا ہنس کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تیرے گھر سے مٹی لے کر آیا ہوں, یہ مٹی میں اپنے گھر سے لایا ہی نہیں ہوں, یہ تو میں تیرے گھر سے لایا. عامل بے ہوش ہو گیا. لیکن یہ بڑے بےغیرت ہوتے ہیں, بے ہوش بھی نہیں ہوتے, یہ فوراً بات کو بدل لیتے ہیں. تو ان عاملوں کا یہی ہے, دوسروں کے بنیان سنگھایا کرو, ان کو بنیان سنگھایا کرو دوسروں کے جا کے. تو دیکھو یہ کیا کہتے ہیں پھر. خیر, تو ہم اب بیان کی طرف آتے ہیں. بیچ میں یہ ذرا بات لمبی ہو گئی, لیکن یہ زندگی گزارنے کے کچھ انتہائی اہم اصول ہیں. اصول پتا ہو انسان کو, بے شک اس پہ عمل نہ ہو. عمل نہ ہونا عملی کو تاہی ہے, وہ صحیح ہو سکتی ہے, لیکن علمی کوتاہیاں انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. نظریاتی کوتاہیاں, تبھی اسلام میں عقیدے کی ویلیو عمل سے زیادہ ہے. کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا, عمل تو پھر ایک الگ چیز ہے. کافر جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے, مسلمان پٹ پٹا کے نکل آئے گا, اس لیے کہ کانسیپٹ ٹھیک تھے اس کے, اور کافر کے تو کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں تھے. تو اب ہم چلتے ہیں میرے بھائی, ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. اللہ نے فرمایا इंसान जल्दबाज है, डिप्रेशन में जल्दी जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, जल्दबाजी में फैसले करता है और खुश होता है तो इतराने लगता है, यानी कोई काम भी इसका इतदाल पर मबनी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया चंद क्वालिटीज अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर सब्र भी आ जाएगा, जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। वो क्वालिटीज क्या है? इल्लल मुसल्लीन, सबसे पहले नमाज है, पाबंदी के साथ, तकबीर उला की पाबंदी के साथ नमाज की पाबंदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सात आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लू, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उनमें फरमाया के रजुलुन कल्बुहू मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। जब कसरत से नमाजें पढ़ता है ना आदमी तो दिल मस्जिद में अटक जाता है। जब कोविड के दिनों में मस्जिदें बंद हुई है ना, तो एक सऊदीया के एक बूढ़े अरबी की रोते हुए की वीडियो आई, एसओपीज की वजह से कुछ पाबंदियां लग गई थी ना, मस्जिदें भी बंद हो गई कि भाई बीमारी ना फैले, तो खड़ा हुआ मस्जिद के बाहर रो रहा है। हकीकत ये, जिसको मस्जिद की आदत पड़ जाए, ऐसा नशा है ये, ऐसा नशा है। मैं जो मस्जिद के साथ घर में रहता हूं ना, इसमें मुझे छोड़ने का इसलिए भी दिल नहीं चाह रहा होता, अजानों की आवाजें और बच्चों की सुबह तिलावत की आवाजें आ रही होती, इतना अच्छा मंजर लगता है और बच्चे पढ़ते भी कितने मजे से कुरान, इन्नल्लज़ीना आमनू, एक एक इधर से आवाज मारेगा, बच्चे बड़े हर चीज को बड़ा इंजॉय करते हैं। तो सुबह सुबह ऐसे जैसे परिंदों के चहचहाने की आवाजें है ना, तो मैं घर वालों से कहता हूं अगर हम दूर चले गए ये मंजर, ये सुकून नहीं मिलेगा। अजान की आवाज आती है, पांचों अजानों की आवाज, फिर रमजान में जब तरावी होती है तिलावत की आवाज जा रही होती है, मैंने अपने घर में माइक लगाए हुए हैं, तरावी की आवाज जाए घर के अंदर, तो स्पीकर लगाए हुए हैं, स्पीकर होंगे माइक वो जो स्पीकर लगाए हुए हैं, तो सुबह बच्चे तिलावत कर रहे होते हैं ना फजर के बाद मदरसे के बच्चे, ऐसी उनकी प्यारी चहचहाने की आवाज आ रही। मेरी छोटी बच्ची थी, उसने खिड़की पे खड़े खड़े ही बहुत सारी सूरतें याद कर ली थी, सॉरी बहुत सारी दुआएं, क्योंकि बच्चे याद कर रहे होते हैं ना, रब्बाना आतीना फिद दुनिया, उसने वहीं पे रब्बाना। तो एक दिन हमने अपनी छोटी बच्ची से पूछा, दूसरी बच्ची से ना, कि रब्बाना आतीना सुनाओ, अभी बोलना भी नहीं आता था, कहती है रब्बाना आतीना फिद दुनिया, आगे कहती है हसन आता हूं व फिल आखिरती हसन आता हूं। इतनी हंसी, मैंने कहा दोबारा, कह रही फिर दुनिया हसनता, हसना निकलना उनके मुंह से मुश्किल होता है, हसनता हूं फिल आखिरती हसनता हूं। तो ये मस्जिद के माहौल से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, इसलिए मस्जिद के करीब रहा करो भाई। हाँ कुछ मस्जिदें ऐसी होती हर वक्त भोंपू लेके ना वो मौजिन लगा हुआ होता है, उससे आदमी फिर पना मांगता है, यार बस कर दे अजान हो बस, इससे ज्यादा नहीं, और अजान भी मुख्तसर, ये जो इतनी लंबी खींच के अजाने देते हैं ये भी खिलाफ सुन्नत है, अजान ही नहीं खत्म हो रही भाई, तू क्या कर रहा है इतनी खींचते, अल्लाह वो खींचे चला जा रहा है यार, मुख्तसर अजान हो अच्छी लगती है, तो बावकार अजान हो, उसमें ज्यादा नहीं वो उतार चढ़ाव कर रहा हो, तो बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है अजान सुन के। मैं जब मदरसे में अजान दिया करता था तो हमें हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने अजान सिखाई थी और बहुत सख्ती की थी कि आड़े तिरछी अजान नहीं देना, बिल्कुल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ऐसे इस तरह से, और अशहदु अल्लाह में ला को खींचना है, उस पर मद है, जहां मद नहीं है वो नहीं खींचना। तो ऐसी सुथरी भी अजान होती थी हमारी, सीधी सादी बिल्कुल, लेकिन उससे सुकून इतना मिलता था। मुझे याद एक दफा मैं अजान दी ना, मैंने जोहर के वक्त में, हम सब सोते थे, सो के जब उठते थे आदमी वैसे ही फ्रेश होता है, तो हजरत को इतना मजा आया, अपने घर छोड़ के ना दरवाजा छोड़ के नीचे उतर आए, जब तक मैं अजान देता ना वो हजरत खड़े होकर अजान सुनते रहे। अजान में बहुत सुकून है, बशर्ते के देने वाला उसको ज्यादा ना उतार चढ़ाव करे, तमीज से दो सीधी सीधी अजान। अजीब अजीब अजाने होनी, अल्लाह अकबर अजीब सी, यानी जितना बिगाड़ सकते हैं ना बिगाड़ रहे होते हैं। एक जगह हम जामिया फारूक के करीब रहा करते थे, शाह फैसल कॉलोनी, तो एक छोटी सी मस्जिद थी, वो अजान कैसे देता था। मैं और मेरे कजन चले गए अजान नमाज पढ़ने के लिए, तो मगरिब की ना, अजान कैसे शुरू की है अभी मैं क्या नकल उतार के दिखाऊं, वैसे बात कर रहे हैं हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक, वहां गया तो अजीब ही स्टाइल निकाला, अल्लाह पता नहीं अजीब सा, मैं क्या, यानी फिर वो मीम बन जाती है ना, पूरा यूट्यूब पे लोग इसको चला के शुरू कर देंगे, अजीब बुनावट कर रहा है अजान में, हमें कभी रोना आ रहा है कभी हंसी आ रही है। हमने कहा अभी तो सही था ये। एक जगह हम गए गांव देहात में नमाज पढ़ने के लिए, इमाम को भी चाहिए जब रुकू सुजूद की जो तकबीर है अल्लाहु अकबर इस तरह कहे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमत, कितना अच्छा लगता है। वो गांव के इमाम थे, हम जब गए तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह घुमा दिया आखिर में। हमने कहा ये क्या स्टाइल मारा है आखिर में यार इन्होंने। भाई तू वो चाहते हैं हमें अच्छा लगे, अच्छा नहीं लग रहा भाई। आप अच्छा जब ही लगता है जब जैसा है वैसा पढ़ा जाए। तो इस तरह घुमा रहे होते हैं लोग अजानों में भी तिलावत में भी घुमा रहे होते हैं, इससे रूहानियत खत्म होती है। तो हम यहां होते हैं इतना अच्छा लगता है, अजान की आवाज आती है और बच्चों के चहचहाने की आवाज आ रही होती है, अजीब सुकून मिलता है उससे। मस्जिद के करीब ना बड़ा बच्चे खुद ब खुद तरबियत हो रही होती है। कल क्या हुआ है, मैं घर में था, मेरा छोटा बच्चा आया, छोटा बच्चा ना लड़का, मगरिब से पहले ना पता नहीं क्या, छोटा है अभी सही बोलना भी नहीं आता, आया नियत बांध के खड़ा हो गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया अचानक रुकू में जा रहा है खुद ही शुरू। कितना सुकून मिलता है बच्चों को इस हरकत में देख के इंसान यार। चलो मैंने कहा ये ऑटो पे है मेरा ख्याल है, ये क्या है ऑटो पे आया, न सलाम न दुआ, एकदम नियत बांध के। घर में आप नमाज पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में एक कमरा नमाज के लिए खास कर दो। साफ मैंने जब जाता हूँ बाज मालदारों के बड़े बड़े घर है, उन्होंने एक कमरा नमाज के लिए बनाया हुआ तो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ होता है वो, उसमें खुशबू जल रही होती है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें सुकून भी मिलता है नमाज पढ़ के। तो उससे क्या होता है जब आप घर में नमाज पढ़ते हो सुन्नतें नवाफिल, बच्चे खुद बहुत सीखते हैं। मैं जब भी घर में खड़ा होता हूँ ना मुसल्ला लेके, इतना मजा आता है, बच्चे दाएं बाएं आके जो मुसल्ला वो नियत बांध के खड़े हो जाते हैं ना साथ में छोटे छोटे बच्चे, और उनकी नमाज टूटती नहीं है। एक मेरी बच्ची ने स्कार्फ लिया तो दूसरे ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, कोई पैंपर वैम्पर चेंज हो रहा था, उसका स्कार्फ लेके खड़ा हो गया, हालांकि वो लड़का है, नीचे से पूरा फारिग हुआ हुआ है और ऊपर से स्कार्फ। मैंने उसकी तस्वीर खींच के उसके नाना को भेज दी, मैंने कहा आपके नवासे के, वो इतना हंसे हैं कह रहे। फिर उन्होंने कहा यार शैतान भी बच्चों से पना मांगता है, उसको पता ही नहीं, स्कार्फ लेके खड़ा हो गया ना। तो आप जब भी घर में मुसल्ला बिछाओ देखो आप, बच्चों को कहना नहीं पड़ता, खुद ही आएंगे फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, पहले उल्टी तरफ सलाम फेरेंगे फिर सीधी तरफ सलाम फेरेंगे, उल्टी हाथ की उंगली उठा रहे होंगे आपको देख के ना, कोई ये उंगली उठा रहा है कोई ये, बच्चे फिर नमाज के दौरान चले भी जाएंगे, पेशाब विशाब करके वापस आके जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर देंगे। किस कदर सुकून मिलता है यार। तो मुसलमान घरानों की ये रौनक है, बच्चे अंग्रेज इन बच्चों से क्या है महरूम, हिंदू भी महरूम हो गए अब तो। मैं तो हमारे घरों की रौनक है, मुसल्ला नमाज तिलावत तस्बीह, अच्छा लगता है यार बच्चे पढ़ते हुए घर में आप आओ तिलावत करते हुए नमाज पढ़ते हुए सुकून मिलता है। हर वक्त टीवी चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं, बेसुकूनी है भाई, बेसुकूनी है ये। तो बाहर मुल्कों में तो बहुत सख्ती से मैं कहता हूं यार तुम तो गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हो, तुमने तो ईमान बचाने के लिए जरूरी है कि मस्जिद के करीब घर लो, तुम्हारा तो ईमान बचेगा नहीं अगर तुम मस्जिद के करीब नहीं रहे। तो मस्जिद के करीब रहा करें लेकिन बशर्ते के मौज़िन के हाथ में हर वक्त भोंपू हर वक्त वो जो हो वो तो फिर दिमाग खराब। ऐसी भी मस्जिदों के करीब मैं रहा हूं हर वक्त बजती रहती हैं। तो हम कहते थे प्रोग्राम चल रहा है अभी, नशरियाती प्रोग्राम है अभी, और उनकी वो फरमाइशी प्रोग्राम चलते थे, लोग इमाम साहब को कहते इमाम साहब ये वाली नज़म सुना दें, वो भोंपू लेके शुरू हो जाते, तो वो लोग बेजार आ गए थे। पहले मस्जिदों के करीब के घर बहुत महंगे हुआ करते थे, अब सस्ते हो गए हैं, लोगों को पता है कि हर वक्त भोंपू। हमने तो जुम्मे की नमाज में भी ना बयान में बाहर का माइक बंद कराया हुआ है, स्पीकर बंद कराया हुआ है कि जिसने बयान सुनना इधर आएगा बाहर आवाज नहीं जाएगी। बहुत लोगों ने कहा कि हम घर बैठे बयान सुनते हैं ऑन करते हैं, हमने कहा आप सुन रहे हो जरूरी नहीं कि सारे सुन रहे हो, तो जिसने सुनना इधर आके सुने, सिर्फ अजान होगी बाकी कोई मस्जिद से बाहर हमारा माइक नहीं जाता। तरावी में भी हमने महदूद किया हुआ है, वरना बाज मस्जिदों की तरावी की आवाज भी हमें अपनी तरावी की आवाज में आ रही। एक दफा तो ऐसा हुआ है मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था, दूसरी मस्जिद ने माइक ऑन किया हुआ, उसने अल्लाह अकबर का, सब लोग रुकू में चले गए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। भाई तू बंद कर इसको माइक यार, तू तो ये भी गलत है, आप मजहब का नाजायज फायदा उठा रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो आप। तो खैर, अल्लाह ने फरमाया कि सुकून किसमें है भाई, नमाज में है। इल्लल मुसल्लीन, घर का सरबरा कुछ कुर्बानियां देता है, नमाज की पाबंदी करता है, लेकिन उसका आउटपुट उसे घर में मिल जाता है। अगर आप ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे कहां पढ़ेंगे? आप ही नहीं पढ़ते, आप सिगरेट पीते हो, आपको मेरे बच्चे न पिए, ये बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो बच्चों की तरबियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे याद है, एक शख्स आया मेरे पास, शराब भी पीता था, गलत एक्टिविटीज में भी था, कहते मैंने सब चीजें छोड़ दी हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहे यार, मेरी जब से बेटी पैदा हुई है ना, बस उसके मुस्तकबिल की फिक्र में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कि बच्ची को जब पता चलेगा अब्बा पीले पिलाने का शौक रखते थे, आगे उसके रिश्तों के मामला आएंगे कि जी इस घर में रिश्ता भेजते हैं, बेटे आपके बाप क्या करते हैं? जी पीते हैं। तो रिश्ता किसका आएगा? पीने वालों का ही आएगा। बल्कि वो भी नहीं, पीने वाला भी चाहता है कि ऐसी जगह भेजू नहीं पीती हो, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि दोनों ही पी के टुन हुए हो। क्या ख्याल है? तो मार देंगे एक दूसरे को। तो मुसलमान को अल्लाह की कसम उठा के अगर कहूं तो हानिस, हानिस का मतलब झूठा नहीं हूंगा मैं इस कसम में, ये जो इस्लाम अल्लाह ने हमें दे दिया ना, ये फैमिली वाले आदमी को इसकी नेमत का पता है। कितना घरों में जहां इस्लाम है, रमजान में कितनी बरकत होती है घर के अंदर, कितना सुकून होता है, सबका रोजा होता है, सहरी में सब सहरी कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से, ये गैर मुस्लिमों के पास ये नेमतें नहीं है। अजीब मुंह उठाया, वो उधर चला गया। खाते भी अलग अलग है, वो खाते भी अलग अलग है, कोई रिलेशन, बच्चे ही नहीं है तो रिलेशन कहां से होगा? एक आध बच्चे से कोई रिलेशन थोड़ी होता है। सारे ऐसी की तैसी हो गई। खैर, हम आगे चलते हैं। इस पे तो मैं कई दफा बयान कर चुका हूं नमाज के बारे में। अब अगला जुमला, अल्लाह ने फरमाया वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइली वल महरूम। ये बहुत अहम आयत है। कुरान ने जहां भी नमाज का तस्किरा किया, रोकड़ा खर्च करने का लाजमी तस्किरा किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह को कंजूस नमाजी बिल्कुल भी पसंद, बोलो नहीं। कुछ लोग सूफी होते हैं, हर वक्त खड़े हुए हैं। जब आप उनके पास आओ, मुफ्ती साहब घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं मुफ्ती साहब क्यों बोलूं, मेरे पास थोड़ी, क्योंकि मेरे पास जब आते हैं मुफ्ती साहब ही कह रहे होते हैं आपके पास आए, अपने आप को मैं क्यों बदनाम करूं भाई, आपके पास है गफ्फार भाई है, बेचारे हर जगह बदनाम हो रहे हैं, वसीम भाई भी बदनाम, बहुत सारी जगह मैंने उनकी तारीफ भी की है वसीम की। वसीम के पास आए, वसीम भाई बहुत घर में प्रॉब्लम चल रही है, वसीम भाई करोड़पति हैं, को कुछ थोड़ा सा ताबुन हो जाए, वसीम को पता भी चल गया बेचारा गरीब है, मिस्कीन है, रिश्तेदार है, ताबुन करना चाहिए, लेकिन वसीम भाई दो रकत सलातुल हाजत की नीयत बांध लेते हैं कि तेरे लिए मैं गिड़गिड़ा के आज रात इंशाल्लाह दुआ करूंगा। अरे वसीम भाई, मेरी अम्मा बीमार है, पैसे देने, ऑपरेशन कराना है। देखो अल्लाह ने कहा इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो किससे? नमाज से। तो मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो अल्लाह को पता था कि इस टाइप के नमाजी भी मार्केट में आएंगे। दुआ का मौका, दुआ तो करनी चाहिए लेकिन असबाब भी तो अख्तियार करने चाहिए ना। अगले की टांग टूट गई है, पैसे लगा सकते हो लेकिन दुआ से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हो आप, नमाज पढ़ के जुड़ जाएगी वो। हमारे हजरत वाक्य सुनाया करते थे ना, एक आदमी का कुत्ता मर रहा था, ये रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। किसी ने पूछा क्यों रो रहा है? कह रहा है यार मेरा इतने सालों से कुत्ता पाला हुआ है, मर रहा है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। कहा कि क्यों मर रहा है? उसने कहा भाई भूख से मर रहा है ये। उसने कहा ये रोटियों का टोकड़ा है ना, इसको खिला दे रोटी। कहता है यार रोटी पे पैसे खर्च हुए मेरे, रोटी पे पैसे खर्च हुए और आंसू फ्री के। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, रोकड़ा निकलता ही नहीं कमबख्तों की जेब से, ना मां बाप के लिए निकलेगा, ना बहन भाइयों के लिए। बीवी पे बड़े कंजूस होते हैं, बीवी को नहीं खिला रहे होते, ऐसे गिन गिन के हर वक्त रखा होता है उन्होंने पैसा, ना भाइयों पे खर्च, ना बहनों पे खर्च। और जो बड़े दिल के होते हैं ना, गरीब होके भी खर्च कर रहा होता है वो, गरीब होके भी। देखो खर्च करने का हुक्म सिर्फ अमीर को नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, गरीब को भी है। गरीब, और अब गरीब खर्च कैसे करेगा? हदीस में बहुत आसान है, फरमाया इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्की तमरतिन, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, कुछ नहीं तो आधा खजूर सदका कर दो। यार खजूर एक को भी नहीं, आपने फरमाया दो हिस्सों में डिवाइड करो, आधा क्या कर दो? یہ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے دنیا میں؟ تو غریب کروڑوں نہ خرچ کرے نا، تھوڑا کر دے بھائی، 5 روپے دے دے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ بھی ہے. اصل صدقہ خیرات کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت میں مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. ہم سمجھ رہے تھے غربت کے خاتمے کے لیے اللہ نے زکات کا حکم دیا، وہ بھی ہے، غربت بھی ختم ہوتی ہے، غریبوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، غریب بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. لیکن اسلام میں صدقہ اور خیرات کا اصل فلسفہ یہ بولو نہیں ہے. اصل یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جیسے لوگ آپ سے، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ کہتا ہے نا کہ یار قربانی دو میرے لیے، یہ تو قربانی ہے، چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو قربانی دینی ہے آپ نے. کہ اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دولت کی محبت زیادہ ہے، ورنہ آدھی کھجور سے کیا فائدہ ہوگا یار کسی کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدھی، ایک تو میری گھڑی بھی خراب ہوئی ہوئی ہے، یہ اس کو سیل ڈلوانے کے لیے نا یہ بھی رکھ لیں تاکہ 28 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا صدقات و خیرات کا، یہ آیت کا پہلے میں ترجمہ کر لوں. اللہ فرماتے ہیں یہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے لیکن مستحق ہیں ان دونوں کا حق ہے. مانگنے والوں سے مراد جو مستحقین ہیں، پیشہ ور بھکاری جن کا پیشہ ہی یہی ہے، دو نمبریوں کے ذریعے وہ کماتے رہتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہیں. مستحق جو واقعی مستحق ہوں. تو جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس لیول کا توکل نہیں ہوتا، وہ اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں. بھائی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یار، یہ پرابلم چل رہی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کے پاس دو ٹائم کا کھانا ہو، چاہے بالفعل ہو یا بالقوا. بالقوا کا مطلب ہے نہیں لیکن اتنی طاقت ہے کما سکتا ہے، گیتی ہاتھ میں، اس کو پتا ہے آج دہاڑی لگ جائے گی میری، اس کے لیے بھی شریعت میں مانگنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس رہائش کا انتظام ہے اور دو ٹائم کے کھانے کا آج کا انتظام ہے، کل کا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کل کا کل دیکھا جائے گا، آج کا بھی دو ٹائم کا نہیں ہے، اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کھانے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس، وہ بھی مجبوری ہے. تو یہ تین مجبوریاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو شریعت میں آپ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام، بہت برا عمل ہے یہ. نبی نے فرمایا جو بھکاری ہے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے سے انسان کا حسن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا، اللہ اس ذلت کو دنیا کے سامنے لے آئے گا ان کے چہرے کا گوشت اتار کے، ڈھانچہ بنے ہوئے ہوں گے یہ. تو اس لیے بلا ضرورت سے شدیدہ اسلام میں مانگنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہلکا جرم نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے پسند نہیں ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہائر ایجوکیشن کے لیے، مجھے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتا ہوں، کچھ زکات وغیرہ مل جائے گی؟ ابھی تو کیا کر رہا ہے لوگوں میں، کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو ہائر ایجوکیشن کے لیے. البتہ ایک صورت میں مانگنا جائز ہے اضافی ضرورتوں کے لیے بھی، وہ صورت یہ کہ آپ قرضہ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا، 100% یقین ہو اور ارادہ بھی ہو تو جائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی آپ نے اپنی شادی کرنی ہے، مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر کے، لیکن آپ کو پتا ہے میری جاب ہے یار، ابھی میں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا، 2 مہینے بعد رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو مجھے پتا ہے 2 مہینے میں میری سیلری آئے گی، میں دے دوں گا. تو اپنے کسی قریبی دوست سے آپ نے قرضہ مانگ لیا، یہ جائز ہے. یہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یار تو پیسے دے دے کل میں دے دوں گا، میرے اکاؤنٹ میں پرسوں آئیں گے، اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے، یہ آپس میں تعاون ہے. اس میں تعلیم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، بھائی میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے اور اس کی اتنی فیس آ رہی ہے، اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر، تو ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے لیکن میں پلاٹ بیچنے میں لگا ہوا ہے، بیچ دوں گا، تو پلاٹ جیسے ہی بکے گا تو میں آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا، ہے میرے پاس پیسے، یعنی اس کو پتا ہے کہ اور بک بھی جائے گا. لیکن اگر اس پلاٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو یہ ایڈمیشن 1 سال ضائع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے، لیکن یہ بھی کس سے؟ ان لوگوں سے جن سے بے تکلفی ہو، جن سے مانگنے میں انسان کو ذلت محسوس نہ ہو. अब आप कहोगे हमें तो किसी से मांगने में भी जिल्लत नहीं होती, तो इसमें एक शर्त है कि इज्जतदार आदमी को मांगते हुए जिल्लत महसूस ना हो, यानी जिसकी इज्जत हो उसको महसूस ना हो, क्योंकि बॉसों को तो कुछ महसूस होता ही नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही, उनके लिए तो वैसे ही नाजायज है। बाज दफा आदमी इसकी इतनी बेतकल्लुफी होती है ना, चमाट मार के भी मांग ले, जैसे होटलों में दोस्त खाना खाते हैं, अबे तू निकाल पैसे यार कल मैं दे दूंगा, तो ये दोस्ती यारी है, इसमें इसको भीख नहीं कहते, अबे दे यार तू अपने अकाउंट से पैसे डाल दे यार मैं एक महीने बाद दे दूंगा, तो वो बेतकल्लुफ, उसको आपको पता है वो भी मांग लेगा मुझसे, आज आपने उसको उसको बोला यार तू पे कर तो कल आप पे कर दोगे, वो तो इसको मांगना नहीं कहते, इसको भीख नहीं कहते, ये बेतकल्लुफी में सब कुछ होता है, ये जायज है, ये तो सब सहाबा के दौर में भी होता था। मांगने का मतलब क्या है, आपको महसूस हो रहा हो कि मैं अपनी इज्जत को क्या कर रहा हूं, गिरा रहा हूं, ये हराम है नाजायज है। तो ये सिर्फ उस सूरत में जायज है कि जब आपके पास दो टाइम का खाना भी नहीं है, क्योंकि या तो इज्जत बचा लो या पेट बचा लो। लेकिन यहां भी क्या है कि जो सफेद पोश होते हैं जिनमें कामिल दर्जे का तवक्कुल होता है, वो कहते हैं भूख से मर जाओ मेरे भाई, हाथ हमने नहीं फैलाना, लेकिन फिर अल्लाह उनको मरने नहीं देता, थोड़ा सा उनको अल्लाह आजमाता है, फिर रिस्क के दरवाजे खोलता नहीं है, तोड़ता है, लेकिन इसके लिए बहुत आजमाता है अल्लाह ताला। तो बाज लोग क्या होता है कि वो अपना गेटअप ऐसा रखते हैं कि भीख मांग नहीं रहे होते, लग रहा होता है कि आज जामिया तो रशीद में चंदे की बात चल रही थी ना, तो मैंने जामिया वालों को बोला कि आप लोगों ने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि कोई इस सेटअप पे चंदा नहीं देगा, हालांकि हालात बेचारों के बहुत, कोई भी डोनर हो ना तो जामिया के साथ ताउन करें। तो फिर उन्होंने एक वीडियो बनवाई बड़ी इंग्लिश पिंग्लिश ठीश पिश किस्म की ना, जामे थोड़ी ठह ठीश पिश करके, मैंने कहा इस पे भी नहीं देगा कोई, लोगों की एक नफसियात है, लोग कहते हैं रो गरीब बन के दिखाओ। फिर एक तालबिल था, हमारे तो सैकड़ों तलबा है ना, तो एक मुझे नजर आया, मिस्कीन था ना, गर्दन भी उसकी थोड़ी सी ना अंदर को थोड़ी सी धसी हुई है, मैंने कहा ये बिल्कुल चंदे के लिए, मैंने कहा ये सही लग रहा है मुझे, तलबा हंस रहे थे, जो आज आखिरी क्लास थी बुखारी की, हंस भी बहुत रहे थे तलबा, मैंने कहा ये हंसता भी रोता हुआ लगता है, तो सोचो रोता हुआ कैसा लगेगा ये, मैंने कहा जब ये हंस रहा होता है ना ऐसा लगता है रो रहा है, इसकी रोते हुए की वीडियो मैंने कहा डालो, मैं अपने चैनल पर डालूंगा कि ये हालात है, मैंने कहा देखो दे धनाधन चंदा ही चंदा। तो बेतकल्लुफ था, वो भी हंस रहा था, जिससे बेतकल्लुफ ना उसे ऐसा मजाक ठीक नहीं है। तो तलबा तो अपने ईशा के बच्चों की तरह होते हैं, वो तो खुश होते हैं ऐसे मजाक से, खैर कुछ होते हैं ऐसा लगता है। तो भीख मांगने का एक तरीका तो ये है, आप मांगे, एक तरीका ये गेटअप ऐसा बना के रखें कि इंसान का दिल चाहे भाई इसको कुछ पैसे दे दो, कोई कपड़े खरीद ले, ये भी क्या है, गलत है मेरे भाई, जैसे हो वैसे नजर आओ यार, जैसे हो वैसे नजर आओ, अपनी हाजत किसके सामने जाहिर करो, अल्लाह के सामने। तो होता यह कि अगर आप में इस्तिगना आ गया ना कि भाई मर जाऊंगा भीख नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह आजमाता तो है लेकिन दौलत के फिर दरवाजे टूटते हैं खुलते नहीं है, इतना अल्लाह नवाजता है, क्योंकि अल्लाह कहता है जिसने अपने आप को मेरे सामने झुकाया, मखलूक के सामने नहीं झुकाया, मैं कैसे छोड़ दूंगा भाई उसको, फिर अल्लाह में और हकीकी खुदा में और झूठे खुदाओं में फर्क क्या हो गया फिर। तो इसलिए साइल का मतलब समझें, साइल जो वाकई मुस्तहिक हो, लेकिन हर एक में बहरहाल ये तवक्कुल नहीं होता, इसलिए कोई अगर वाकई गुरबत में मांग रहा है तो उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, भाई हम भी बैठ के बातें कर रहे हैं ना यहां पे, अल्लाह ना करे हम पर ऐसे हालात आ गए दो वक्की रोटी नहीं तो हमारा तवक्कुल क्या होगा, ये तो कहना आसान है, उस वक्त इंसान पे क्या गुजरती है, अल्लाह हम सबको बचा के रखे। तो इसलिए अगर कोई वाकई जरूरतमंद है और मांग रहा है तो उसको बुरा भला ना कहें। एक कारी साहब थे बेचारे, बहुत गरीब थे, बड़े हालात खराब हो गए, तो उन्होंने किसी के सामने अपनी हाजत जाहिर की, दूसरे ने कहा देखो ये कैसे मांग रहा है, मैंने कहा यार हमें नहीं पता उसके घर के हालात क्या है, और हर एक का तवक्कुल उस लेवल का नहीं होता सहाबा और बुजुर्गों के लेवल का, तो नॉर्मल जैसे लोग हैं उनको नॉर्मल, तभी तो अल्लाह ने कहा मांगने वालों का भी हक है। तो हर शख्स के, वैसे कारी लोगों को अक्सर मैंने कभी देखा नहीं है मांगते हुए, ये मौलवी लोग कारी लोग पेड़ भरे हुए होते हैं, अल्लाह ने ऐसा इनको रिज़्क़ दिया होता है, कभी बेरोजगारी की वजह से कोई लटकता भी नहीं देखा मैंने। बस बात को जल्दी से खत्म करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं कंजूस नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं है, इनके माल में हक है, ये हक का लफ्ज कितना पावरफुल है, राइट है, इनका हक है किसका, غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. یہ حق کا لفظ اللہ نے استعمال اس لیے استعمال کیا کہ یہ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسے جیسے کسی سے انہوں نے مزدوری کروائی, کام لیا اور اس کی سیلری دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے, اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہی اس لیے تاکہ ہم سوسائٹی کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یہ ہم نے اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے. اس میں اور بھی بہت اہم پوائنٹ کی باتیں جو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کل زکاتوں کا بھی بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہت سی تنظیمیں زکاتیں, وہ غریبوں کے علاوہ انہوں نے اتنا زکات کے مفہوم میں عموم پیدا کر دیا ہے, اس زکاتوں سے بزنس کلاس کے سفر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں فی سبیل اللہ جہاں بھی چاہے زکات خرچ کرو دین کی تبلیغ کے لیے. پھر تبلیغ میں تو یہ بھی داخل ہے, آپ بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہو تو زکات لے کے بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. بزنس کے اس میں یہ بھی داخل ہے, ہم نے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو جو ہے نا اس کے لیے اسٹینڈرڈ کا کیمرہ چاہیے تو زکات میں وہ کیمرہ بھی, کیمرے میں بھی زکات استعمال ہو رہی ہے. پھر جی راستے میں جتنا کھانے پینے کا ہوٹلنگ ہے, ہم چونکہ تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں تو ہوٹل کا خرچہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ زکات سے. وہ کہتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ میں ہے نا سارے, ہم کوئی اپنی نانی کے گھر تھوڑی آ رہے ہیں ملنے کے لیے. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے, جبکہ زکات کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا, یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالدار سے لی جائے گی غریب کو دی جائے گی. تو اس طریقے جب فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ اتنا عام کر لو گے تو غریبوں کے پیٹ سے نوالا چھین لو گے. اس لیے تبلیغ میں خرچ کریں لیکن زکات نہیں, زکات تبلیغ میں خرچ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہی موقف ہے اور احناف کا بھی یہی موقف ہے اور یہی دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط موقف ہے. کبھی دلائل تو میں پھر بعد میں کبھی دوں گا, لیکن اس موقف پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا لوگوں کا ایک سرمایہ اربوں کھربوں کروڑوں روپے کا, وہ مبلغین کی جو ہے نا کھانے پینے پہ. مثال کے طور پر میں امریکہ جاؤں دورے کرنے کے لیے اور میں آپ سے زکاتے لے کے جاؤں کہ یار میں فی سبیل اللہ جا رہا ہوں اور میری نیت بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کروں گا تو زکات لوں میں, اور پھر میں کہوں میں چونکہ بیگم کے بغیر نہیں جا سکتا اور میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تو فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو میری جتنے لوازمات ہیں وہ بھی جائیں, تو میرے 18 بھی میرے ساتھ چلے گئے, یہ 18 نہیں 2-4 چلے گئے, چلو تو 2-4 میرے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں ہم نے ہوٹل بک کرایا, پھر وہاں رہ رہے ہیں, پھر جب بھوکا تو نہیں رہوں گا, وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آج کل بعض اسکالرز یہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے سب چیزوں کے لیے زکات لے رہے ہیں, ٹی وی چینل بھی زکاتوں سے چل رہے ہیں. تو یار یہ اتنا پیسہ تو غریب کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. قرآن تو غریبوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے کہا پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی, تو انہوں نے کہا دین کی تبلیغ اتنی کرو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. غریبوں کے منہ سے نوالا چھون چھین کے اللہ کو تبلیغ بھی کروانی ہے اور اللہ کو ان غریبوں کو بھی خیال کرنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور دوسرا بیٹا سال کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہو, تو اب باپ کیا کہے گا, بیٹا پہلے اس کو کھلا لے پھر تو پھر چلا جا. تو باپ تو سب کو دیکھے گا نا, وہ کہے گا دین بھی پھیلے لیکن میرے بچے بھوک سے بھی نہ مریں. تو اس لیے جو آج کل اسکالرز آ رہے ہیں زکاتیں لے کے دین کی تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, نیت اچھی ہے آپ کی, لیکن بھائی اس سے غریبوں کے منہ کے نوالے چھن رہے ہیں. غربت کتنی دنیا میں جہاں غریب ہیں وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, ان کی پیٹ میں جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس مسئلے کو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں اور زیادہ ذرا ڈیٹیل سے بیان کروں گا. یہ جو ہے نا جہلم سے آئے ہیں, جہلم اسٹیشن. میں جب جہلم گیا تھا نا پتہ کرنے, تو جو میرے بارے میں کہا تھا 48 گھنٹے مفتی صاحب غائب ہو گئے اور یہ پروپیگنڈا کیا تھا نا بھاگ گئے یہ وہ, تو 2 دن میں ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. تو پوری ٹیم ہماری جو 4-5 لڑکے تھے نا پتلے پتلے سے کراچی کے, جن کو کہا تھا کہ یہ بدماش لے کر آئے تھے, تو یہ انہوں نے ٹھہرایا تھا اپنے گھر 2 دن کے لیے ہمیں. تو آج اتفاق سے کراچی آئے ہوئے تھے, ملنے آئے ہوئے تھے, ہم نے کہا پھر کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا, ٹھیک ہے 2 دن ہم نے ان کا کھانا کھایا ہے تو ایک ٹائم کا تو ہمارا بنتا ہے نا. تو یہ گواہ بھی ہیں کہ میں جہلم میں ہی تھا, بھاگا نہیں تھا وہاں سے. اچھا بھائی, اچھا میرے بھائی, آج کل بہت سی جگہوں پر ایک ایک سال کے غیر معیاری فقہ کے تخصص کرائے جا رہے ہیں, جہاں بھی جہاں اچھی استعداد پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی, وقت گزاری کے لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, اور بہت سی جگہوں پر تو آن لائن مفتی بھی بنایا جا رہا ہے. اس طرح ہفتے میں صرف 1 دن کلاس بھی ہوتی ہے. اس طرح مفتی بنانا درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے. مفتی کا لفظ بہت ہی ہلکا ہو گیا مارکیٹ میں. مفتی کیسے بنتا ہے جلدی مختصر سے میں بتا دوں. یہ جو میں نے بیان میں آج بتایا نا 5 قسم کے علوم ہیں جن میں مہارت ہو کے عالم بنتا ہے، عربی گرامر، عربی ادب، پھر صرف، سوری یہ تو عربی گرامر عربی ادب میں آ گیا، یہ ایک ہو گیا، عربی گرامر الگ ہے، عربی ادب الگ ہے، دو علوم ہو گئی ہے، تیسرا ہے فقہ، چوتھا اصول فقہ، بلکہ تیسرا قرآن، چوتھا حدیث، پانچواں فقہ اور چھٹا اصول فقہ. ان چھ علوم میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پہلے آسان، پھر تھوڑی مشکل، پھر تھوڑی مشکل، ہوتے ہوتے آخر تک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دو قسم کے تخصصات ہوتے ہیں، تخصص فی الحدیث، حدیث تو پڑھ لیے لیکن اس میں اسپیشلائزیشن بھی کیا جاتا ہے. پھر تخصص فی الفقہ، فقہ میں اسپیشلائزیشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ایسے جیسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتا ہے، میڈیکل سائنس آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں پریکٹیکلی مریضوں کو دیکھا جاتا ہے. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے، پریکٹیکلی عملی دنیا اور ہوتی ہے. جب بھی کوئی عالم بنتا ہے نا تو کتنے مسائل پڑے ہوں، پبلک جب آ کے پوچھتی ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، اس کو نہیں آ رہے ہوتے جواب. تو پبلک جب آ کے، میں اپنا اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، میں نے وراثت پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے وراثت کی کتابیں، لیکن کیا ہوا، جب ہم مفتی بننے کے لیے تخصص کے لفتہ میں داخلہ لیا، حضرت مفتی ابوالبابا صاحب ہمارے استاد سے جو میرے پاس سوال آیا، وہ سوال آیا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے. وہ آدمی کہتا ہے اس کا کیا جواب دوں بھائی. وہ سوال یہ آیا، ہم نے 1975 میں ابا کا انتقال ہوا تھا، تو یہ گھر تھا، پھر اس کے اوپر بڑے بھائی نے ایک کمرہ بنایا، اس نے دوسرے بھائی نے واش روم بنایا، تیسرے نے اس کے اوپر ایک اسٹوری بنائی، چوتھے نے نلکے لگا دیے، پانچویں نے ٹائلیں لگا دی، پھر یہ کیا، پھر وہ گھر ہم نے بیچ دیا، پھر دوسرا کر لیا، پھر اب فلانے کا ڈیتھ ہو گئی، اس دوران فلانے کی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کو بیوہ ہو گئی، فلانا ہو گیا. اب کمبختو تم 2000 میں جا کے پوچھ رہے اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کر لو حل، جیلم بھجوا دیں یہ مسئلہ آپ. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے جب آدمی پریکٹیکلی اترتا ہے. جیسے ہی میڈیکل سائنس کی کتابیں ڈاکٹر پڑھ لیتے ہیں پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی پیشنٹ آئے گا نا اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے، اس کو کروں کیا میں. تو وہ بڑے ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں علاج کرتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے پیراڈول کب دینی ہے، ٹیکہ کب لگانا ہے، کہاں لگانا ہے، کون سے والے کولے پہ لگانا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کس جگہ پہ لگانا ہے. تو کولے پہ لگانا بھی ہے، بلا وجہ کولے دیکھ رہا ہے کیوں ہے لوگوں کے، جب یہاں لگ سکتا ہے، کیا خیال ہے، جب ادھر لگ سکتا ہے تو کولے پہ کیوں لگا رہا ہے. پیشنٹ کو بعد میں پتا چل جائے وہ چمانٹ مارے گا نا ڈاکٹر کو آ کے. اب وہ ڈاکٹر اناڑی پن میں کہہ رہا ہے یار احتیاط اسی میں کولے پہ ٹھوک دو، تو بعد میں اس کو پتا چلے گا وہ تو مارے گا، وہ دو ٹھیکے اس کے لگائے گا آ کے. تو اس لیے دنیا میں ہاؤس جاب ہے 2 سال کم از کم، یہ 1 سال کم از کم ہوتی ہے بھائی، اس کے بعد جا کے آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ، پھر باہر کتابیں دیکھی، پھر استادوں نے گائیڈ کیا، اس میں ایسے ہے، یہ شرکت کا مسئلہ ہے، یہ ہبا تبرو کیا ہے اس میں، بہت بہرحال پھر مجھے لگا ہوگا 15-20 دن اس کو میں نے حل کر کے اس کا جواب لکھا. پھر لکھ کے اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام تھا، اس کو پھر سمجھایا، خیر وہ حل ہوا. ایسے پریکٹس اس طرح سے کم 10 سال کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹیکلی مسائل کو حل کرے، کم سے کم 10 سال یہ پریکٹس ہونی چاہیے. طلاق کے مسائل آتے ہیں، وراثت کے مسائل آتے ہیں، نماز کے مسائل آتے ہیں، کاروباری مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ بزنس جائز ہے ناجائز ہے، سود کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آج کل لوگ غامدی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، وہ ادھر پھینک دی غامدی صاحب نے، وہ فلانے سے پوچھا اس نے اپنی پھینک دی، تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے لوگ. ابے بھائی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو، صدیوں سے اس پہ کام ہوتا آ رہا ہے، حکومتیں چلی ہیں اسلامک لا پہ، اس لا کو پڑھنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث سے یہ کیسے نکالا ہے، کہاں سے استنباط کیا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو اس کے بعد جا کے انسان میں کچھ مہارت پیدا ہوتی ہے. تو کم سے کم 10 سال. تو مجھے جو فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے 13 سال پریکٹس کرنے کے بعد مجھے اجازت ملی ہے کہ اب آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اور اپنے دستخط کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہو، جو بڑوں نے اجازت دی. پھر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا. مجھے 2012 میں اجازت ملی تھی جو ہمارے استاد ہیں مفتی محمد صاحب، ان کی طرف سے کہ آپ جہاں ہو وہاں آپ دارالفتا کھول سکتے ہو، یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ آپ تحریری فتویٰ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ دے سکتے ہو. میں نے اسٹیمپ بنوا لی، اس کے بعد بھی نہیں دیا. میں وجہ کیا تھی کہ یار میں کیوں یہ ذمہ داری پالوں، میرے فتوے پہ کسی نے کوئی غلطی خدا نہ خواستہ ہو گئی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو میں پھر جامع ترشید بھیج دیتا ہوں، دارالعلوم کرنگی، بنوری ٹاؤن، یہاں بھیج دیتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اتنے لوگ مسائل پوچھنے لگے، اتنے لوگ وہاں جامعہ کا نمبر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ڈاک کا رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے तो मजबूरन अभी 2022 में जाके या 23 में जाके मैंने शुरू किया कि चलो मैं अपनी स्टेम के साथ ही, यानी कितने साल तजर्बा, 23 साल तजर्बा, एक साल तो कोर्स किया है, उसके बाद 23 साल तजर्बे के बाद जाके फिर मैंने ये काम शुरू किया कि चलो मैं अपनी स्टेम के साथ, वो भी हत्ता इम्कान कोशिश होती है उन्हीं को पहना दो यार, सही है ना, जामे तो रशीद भेज दो, ये दारुलूम भेज दो, बहुत ही कोई हो मुश्किल तो चलो यार फिर फतवा लिखो, लेकिन आज आप पत्थर उठाओ क्या निकल रहा है, मुफ्ती, और फखर भी है, मेरी राय है ये, मेरी राय है ये। तो ये जो हर वक्त हर मसला बयान कर रहा है ना, इसका मतलब भाई ये नहीं हो सकता सही, इतनी नॉलेज किसके पास, आपने कहा सारी जिंदगी आपने किया किया है, सारी जिंदगी आपने किया किया है, आप तो किसी और शोबे के हो, तो आप एकदम से कैसे आ गए, फेंके जा रहे हैं मसले बताए जा रहे हैं। ये जो वीडियो सीडी को हमने जब हलाल करार दिया है ना कि ये तस्वीर जायज है, एकदम से उन्हीं के मुंह उठाए उठे और जायज है, उस पर कितनी रिसर्च हुई है, दारुल उलूम करंगी में इजलास हुए हजरत मुफ्ती तकी साहब की निगरानी में, फिर इसके जो वीडियो के कैमरे के माहिरीन है उनको बुलाया गया, फिर अकेले नहीं थे हम, उलमा का पूरा पैनल था। अच्छा, जो जदीद मसला आता है उसमें तो इंडिविजुअली राय देने की इजाजत ही नहीं है, ये तो उन मसाइल की बात कर रहा हूं जो सदियों से चले आ रहे हैं, उसमें फतवा दे देता हूं मैं, जदीद मसाइल जो आते हैं उसमें तो भाई एकदम से नहीं, उसमें मशवरा होता है, पूरा पैनल उलमा का बैठता है उसमें, जामेत रशीद आओ कभी खुशबू लगा के या दारुल करंगी जाओ, तुम्हें पता चलेगा कैसा किताबों की भरमार है और कितने बड़े बड़े अल्लामे बैठे होते हैं, कितनी डिबेट होती है, मजलिस होती है, उसके बाद जाके राय दी जाती है। यहां क्या है, उठे और मेरी राय है ये, और एक्चुअली करके पब्लिक बेवकूफ बन रही होती है क्योंकि पब्लिक के पास उतना भी इल्म नहीं होता, तो हर चीज के अहल होते हैं। हाँ, इन्हीं मुफ्तियों में फिर दो नंबर भी होते हैं, लेकिन मुफ्ती तो होना सही है ना, फिर उसमें आदमी फैसला करे एक नंबर है कि दो नंबर, जैसे इलाज के लिए डॉक्टर तो हो फिर हम देखेंगे यार दो नंबर है या एक नंबर है, डॉक्टर ही नहीं है तो उसका दो नंबर एक नंबर का करना क्या है आपने, तो उसके बाद आदमी इतनी है, उसके बाद जाके वो इस काबिल होता है कि उसको मुफ्ती कहा जा सके या वो फतवा दे सके। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, मुफ्ती बन जाते हैं वो, ऑनलाइन कैसे बन गया मुफ्ती, है तो पूरी एक एक निगरानी करनी पड़ती है, उसकी वर्डिंग भी सही करनी पड़ती है इबारत, तो बेड़ा गरक हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करे, हम पे तो पाबंदी थी कि एक साल जो तखसुस फिल फिका स्पेशलाइजेशन एक साल जो होती है ना, उसके बाद किसी को मुफ्ती नाम के साथ लगाने की इजाजत नहीं है, उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि अभी यहां से तखसुस किया और मुफ्ती फला कथन नहीं, जब तक बड़े इजाजत ना दें आपको, लेकिन सब लगा रहे होते हैं। और कोर्सेज भी कहां कहां, कोई उधर एक छोटा सा खोल के बैठा हुआ है दारुल इफ्ता, चल भाई ये भी मुफ्ती है, उधर भी मुफ्ती है, तो सब ही मुफ्ती हैं, आमिल भी मुफ्ती हैं, मुफ्ती साहब है, क्या काम है, जिन भगाते हैं, जिन भगाने वाला तो मुफ्ती हो ही नहीं, मुफ्ती के लिए तो अच्छा। फिर ये 10 साल के बाद भी, जो 10 साल की प्रैक्टिस हो तो उसके बाद भी मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह, जो बहुत बड़े मुफ्ती थे पाकिस्तान में ना, हजरत मुफ्ती शफी साहब के साथ रहे, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उनके शागिर्दों में है, तो वो कहते थे फिर भी मुफ्ती उसको डिग्री दी जाएगी जिसमें दिमाग भी हो जिसका, क्योंकि हर एक का अलग जौक होता है, अलग जौक होता है। फरमाया बाज लोगों 20 साल भी वो कोर्स करें और प्रैक्टिस करते रहे वो फिर भी मुफ्ती नहीं बनते, क्योंकि खोपड़ी नहीं है उनके पास ऐसी, क्योंकि ये कुछ खुदादाद सलाहियतें भी होती हैं चीज को समझने के लिए ना, एनालाइज करना आता हो, तजिया करना आता हो चीजों को, तो वो बाज लोगों के पास वो भूस भरा हुआ होता है इनके दिमाग में, वो 100 साल भी आप उनको सिखाते रहोगे वो भूस का भूस ही रहेगा उनके दिमाग में, उसके लिए खोपड़ी का होना भी जरूरी। और ये हदीस से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया रुब्बा हामिल फिकहिन गैरु फकीहिन, बहुत से लोग इल्म जानते हैं समझते नहीं है, ये अल्लाह की देन है, कुछ के पास नॉलेज बहुत होती है खोपड़ी नहीं होती, लिहाजा वो उस नॉलेज को कौन सी जगह कहां लगानी है उनको पता ही नहीं होता। आज यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे मुफ्ती आ रहे हैं, उसूल फिका से इस्तेदलाल कर रहे होते हैं, ये उसूल है, हालांकि वो उसूल वहां फिट बैठ ही नहीं रहा होता, तो लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, फिर वो तो पता ही नहीं होता। तो इसके लिए दिमाग भी होना चाहिए, जैसे वकील होते हैं ना होशियार किस्म के, कैसे एनालाइज करते हैं चीजों को, वकील और मुफ्ती का खोपड़ा एक जैसा ही होता है, खोपड़ी कहना चाहिए, गलती से खोपड़ा कह दिया, दोनों की जो माहिर वकील हो या माहिर जज हो और मुफ्ती हो, इन तीनों के लिए एक जैसा दिमाग होना चाहिए कि वो पकड़ सकते हो कि कहां गड़बड़ कहां हो रही है। लेकिन आजकल इन तमाम चीजों पे कोई वो नहीं है, कोई गवर्नमेंट का तो कोई सेटअप ही नहीं है, तो कोई सऊदी अरब में नहीं बनने देते किसी को मुफ्ती भाई, दुबई में भी नहीं है। जो मुंह उठाए को मुफ्ती हुआ है तो वो होगा अपने घर में होगा, निकल यहां से। ठीक है, सिर्फ फुद्दू खाता कहां खुला हुआ है? ये पाकिस्तान में पत्थर उठाओ मुफ्ती, हजरत मुफ्ती फलां साहब, बात तो शक्ल से ही लग रहा होता है, ये मुफ्ती ही तो हो ही नहीं सकता, जोकर लग रहे होते हैं वो शक्ल सूरत से ही। अच्छा भाई, अच्छा मैंने बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को देखा है, जब उनसे मसला पूछो बहुत से मसाइल के बारे में कहते हैं अरबी हमें मालूम नहीं है, तहकीक करनी पड़ेगी। हजरत मुफ्ती तकी साहब कितने बड़े मुफ्ती हैं। मैं अक्सर वाक्य सुनाता हूं, मैंने हजरत को फोन किया, हजरत इस मसले का जवाब, हजरत ने फरमाया इस वक्त जहन में नहीं है, मैं तहकीक करके बताता हूं। तो मैं इस चीज से मुतासिर हुआ था, हालांकि हमें पता है हजरत तो हम तो खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन बड़े आलिम का यही होता है, 24 घंटे हर वक्त हर चीज किसी को मालूम नहीं होती है। लेकिन किसी छतुंगड़े को फोन करो ना आप, टुच्चे को, ठक जवाब हाजिर, ठक करके क्या है जवाब हाजिर, कभी ना निकलेगा ही नहीं मुंह से फूटे मुंह। तो जिसको सब पता है इसका मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है। मैं खुद बार दफा मसाइल का जवाब दे रहा हूं ठका ठक, क्योंकि अब तो हम तो इतना हो गया है ना मसाइल का जवाब दे दे के, अब तो एक साहब मौलाना साहब कहने लगे यार आप 40 मिनट का वो मसाइल जवाब रिकॉर्ड ठक 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 कैसे जवाब दे रहे होते हो। हमने कहा भाई 24 साल से काम ही यही किया है, अभी भी एक्सपर्ट, फिर भी फंस जाता हूं मैं, जवाब देते देते मुझे नहीं आ रहा होता तो मैं कंफ्यूज होता हूं, तो मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूं कि यार ये मैं तहकीक करूंगा, फिर स्क्रीन शॉट लेके उसका सेव कर लेता हूं, बाद में अपने शागिर्दों के जिम्मे लगाता हूं इसकी तहकीक करो भाई, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर ये नहीं करता कि बस फेंक दो जाके, फिर भी बाज दफा गलती हो जाती है, फिर रुजू का ऐलान करना पड़ता है। इनसे कम वक्तों से कभी गलती भी नहीं होती, जवाब भी ठक करके हाजिर है, और ऐसी अफलातूनियां बुकरातियां मार रहे होते हैं, हम हंसी आ रही होती है यार, तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता यार, तुम क्या कर रहे हो। आजकल मुसलमान हरम शरीफ में चप्पलों के साथ दाखिल हो रहे हैं और तवाफ और सही भी चप्पलों को पहन के कर रहे हैं, जबकि इसके बगैर सामने अपने महल्ले की बजी भी चप्पल पहन के, भाई वो चप्पलें साफ सुथरी होती हैं, तो अगर हरम में कोई चप्पल पहन के जा रहा है और साफ सुथरी चप्पल है तो कोई हरज इसमें नहीं है, तो अगर वहां इससे गंदगी फैलेगी तो गवर्नमेंट खुद ही पाबंदी लगा देगी, गवर्नमेंट खुद ही पाबंदी लगा देगी भाई चप्पल पहन के नहीं जाओ, लोग करने दें तमीज से उभरा करने दें, बाद लोग नंगे पाँव नहीं कर सकते, तो चप्पल भी साफ सुथरी होती है, वो ऐसी नहीं होती गंदगी वाली चप्पल, अगर गंदगी वाली चप्पल है तो फिर तो हराम है ले जाना, फिर नाजायज है। बाद लोगों ने अपने अलग से एक चप्पल रखी होती है, उनको वो कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें अपने आप को, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऊंट पे बैठ के भी तवाफ किया है, ऊंट पे बैठ के, लेकिन अब आप ऊंट ना ले जाना, पकड़े के मारेंगे छुरते वहां। मैं काफी अर्जे से कुर्बानी नहीं कर पा रहा हूं और काफी कर्जा भी चढ़ा हुआ है, और हालात भी ऐसे कि ज़कात भी नहीं अदा कर पाता। जब कर्जा चढ़ा हुआ है तो ज़कात लाजिम कहते हैं आपके ऊपर, और अगर लाजिम है तो इसका मतलब इतना पैसा है कि कर्जा उस पैसे से कम है, तो फिर मालदार हैं आप, फिर कर्जा क्यों अदा नहीं कर रहे। मुफ्ती से मुझे बोलते हैं अब्बू कुर्बानी क्या करना है, मुफ्ती साहब बच्चे बोलते हैं अब्बू कुर्बानी मैं क्या करूं, बच्चे तो बोलेंगे, बच्चों की जेब से थोड़ी पैसे निकल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं होते, कितनी दफा ये लफ्ज बोल चुका है मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि मैं जुमे वाले दिन पहली सब में नमाज पढ़ूंगा तो मुझे एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, ये इसको कहते हैं माइंड, और एक ऊंट 3 लाख का आता है और मैं 12 लाख की कुर्बानी करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे बोलते हैं कि मैं असल वाली कुर्बानी करो ये वाली नहीं, तो मुझे नहीं पता भाई, बच्चे तो बोलते हैं बच्चों का शौक है, तो कितना पूरे साल थोड़े से पैसे जमा कर लो, एक छोटा मोटा दुम्बा ले, बच्चों की बकराई तो होती बच्चों की है यार, हम तो ये ऊंट लेकर आ गए थे, बच्चों ने वाट लगा दी थी उस ऊंट की, पूरे महल्ले में उस पे ना घूमते हैं, बच्चों की ऐसी ईद हो जाती है ना जानवरों से, तो ऊंट ना लेकर आए आप, एक छोटा मोटा दुम्बा ले आए, रमजान में दुम्बे बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं, दुम्बा तो 6 महीने का मोटा ताजा वो भी जायज है। मुझे याद है मेरे वालिद साहब ने 2 महीने पहले मेरे लिए बचपन में एक दुम्बा खरीद लिया था छोटा सा, का बकरीद में जबा कर रहे हैं, मुझे जो खुशी हुई थी उस दुम्बे से भाई, उसको मैं रोजाना स्कूल से आके चराने लेके जाता, चने की दाल खिलाता उसको, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भूसी टुकड़े खिला के उसको ऐसा मोटा ताजा कर दिया था हम, फिर जिस दिन जबा होने लगा ना, मैं मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो मुझसे मानूस इतना हो गया था कि जहां मैं जाऊं पीछे पीछे, तो मेरे आंख से निकलने लगे आंसू, तो मैं वहां से भाग गया। मैंने कहा यार मैं भाइयों ने जबा किया, क्योंकि वो उस वक्त भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कहा बेटा अब तेरे दिन आ चुके हैं, अब तेरे पीछे आने का फायदा नहीं है। तो बच्चों को के लिए जो है ना एक सस्ता सा दुम्बा खरीद लें, अगर इसकी भी ताकत नहीं है, वैसे तो है जब ज़कात आप पे वाजिब हुई हुई है तो होगी ताकत, अगर इसकी भी नहीं है तो फिर बच्चों को बोले सबर करो बेटा, और क्या कह सकते हैं, यही कहेंगे, चोरी थोड़ी करेंगे, उनको भी सफे अब में लाओ बोलो ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिल रहा है। मुफ्ती साहब कुछ लोग बच्चों की तरबियत ना कर सकने के सबब बच्चे नहीं पैदा करते, इसके बारे में बताएं। बच्चों की तरबियत में ये बात कतान गलत है कि कम बच्चे होंगे तो तरबियत आसान होगी। असल में तरबियत की डेफिनेशन को समझने में लोगों से गलती होती है। तरबियत की डेफिनेशन क्या है? तरबियत की डेफिनेशन है कि बच्चा में अखलाकियात, कोई गैर अखलाकी हरकतें ना करे, समझते हो, झूठ चोरी चर्स हीरोइन ये सब चीजों से बचा रहे। गरीब होना ये तरबियत के मुनाफी नहीं है। तो बच्चे जब ज्यादा होते हैं तो वो खुद एक दूसरे की तरबियत कर रहे होते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है ना, अल्लाह ने नेचुरली उसके दिल में बाप वाले जरासीम डाले हुए होते हैं छोटे के लिए। जैसे बाप खुद कितना भी गलत हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरे बच्चे गलत हो, तो ऐसे ही बड़ा भाई खुद बेशक छुट्टे भी लगाता हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरे छोटे भाई भी लगाए। छोटे भाई को वो ठीक ही करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ज्यादा होते हैं तो उनका पालना आसान होता है। मुश्किल जब होता है जब इकट्ठे पैदा हो जाएं। अब जब मेरे 18 का लोग सुनते हो, 18 भी कैसे पाले होंगे भाई साहब, एक दिन में थोड़ी हो गए 18। जब 18वां हुआ है तो पिछले बड़े दो की तो शादी भी हो चुकी है, उनके अपने बच्चे हो चुके हैं, तो उन्होंने भी पाला है। अब जो छोटा बच्चा है उसको उसकी बड़ी बहन ने बहुत पाला है, हमें तो पता ही नहीं वो पल कैसे गया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन थी वही संभाल लेती थी उसको। बहनों को तो इतना शौक होता है अपने छोटे भाइयों को संभालने का। मुझे याद है एक दफा मैंने घर वालों को लेके किसी वर्कशॉप में जाना था, कोई बड़ी जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट वगैरह की हो रही थी वर्कशॉप, तो मैं उस वाइफ को लेकर गया जिसके बच्चे ज्यादा है, जिसके नहीं है उसको लेके नहीं जा सका। वजह उसकी है कि जिसके ज्यादा है उन बड़े ने छोटे को संभाल लिया था और घर वालों का मेरे साथ सफर आसान हो गया। जिसके नहीं थे ज्यादा उसको लिए मुश्किल थी कि भाई इन बच्चों को कौन संभालेगा। उस वक्त मैंने वहां जाके बताया, मैंने कहा ये तो आज पता चला कि ज्यादा हो तो संभालना आसान है, बड़ा संभाल लेता है ना, या बड़ी बच्ची संभाल लेती है। तो ये एकदम से नहीं पैदा हो जाते, ये जब पैदा तफसील से होते हैं, डिटेल से पैदा होते हैं। ये पहले एक आता है वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर दूसरा, ये आप चाहो भी तो नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से है। तो इसलिए ये बात ही गलत है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो तरबियत नहीं होगी। ज्यादा बच्चे होते हैं तो सब मिलजुल के तरबियत डिवाइड हो जाती है, तो आसानी से हो जाती है, ये बात गलत है। बहन भाई लाशऊरी तौर पर एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे बचपन में बोलना भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चा, आप तजर्बा करके देखो, अकेले बच्चे को बाइक पे बिठा के लेके जाओ आप, वो चुप बैठा रहेगा पूरे रास्ते। आप दो बच्चों को बिठा लो, वहीं से टटर शुरू हो जाएंगे, बातें शुरू हुई, उनकी मेंटली ग्रोथ, वो ग्रोथ करते हैं वो मेंटली। ये मायरे नफ्सियात कहते हैं यूके लंदन और अमेरिका के, बच्चे को करीबुल उम्र बच्चा चाहिए उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए। जिन बच्चों के करीबुल उम्र बहन भाई होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वरना नहीं होते तो डिप्रेशन में जाते हैं। अक्सर बच्चे घर में तन्हाइयों का शिकार होते हैं, 3-4 साल का वक्फा आ गया, वो बड़ी बहन है उसको अपनी करीबुल उम्र बहन ही नहीं मिल रही, वो फिर कहती है 4 साल से मुझसे बहुत ज्यादा छोटी है, इसके साथ में खेल नहीं सकती, दिल की बातें नहीं कर सकती। तो ये सारे फिर बच्चों में आजकल देखो ना, स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया बच्चों में। और फिर बच्चे जो एक दूसरे को मारते पीटते हैं डांटते हैं, माँ बाप समझते हैं ये होते हैं ज्यादा बच्चों में, भाई ये भी ट्रेनिंग हो रही है उनकी, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रही है उनकी, भाई स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, वो बचपन से सीख रहा होता है। सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हो रही होती, बाद वो उसको कुछ दिया दूसरा छीन के भाग गया, वो चीखता है गले फाड़ फाड़ गया, हाँ वो ठीक है ना, फिर सेट हो जाता है वो सारी उसकी। ये आपने मम्मी डैडी पाल लिया, वो तो बड़े होकर जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। जिनके बहन भाई ज्यादा होते हैं मारते पीटते भी हैं डांटते भी हैं, बचपन की लड़ाइयां थोड़ी होती हैं, वो थोड़ी देर में लड़ रहे हैं थोड़ी देर में वापस सेट हो जाते हैं, तो उससे भी उनके में जो है वो उनकी तरबियत हो रही होती है। تو یہ آپ کو اللہ رسول کی باتوں پہ اگر یقین نہیں آتا, انگریزوں کی باتوں پہ یقین کر لو. میں آپ میری کتاب میں ریفرنسز ہیں, یورپ امریکہ کے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, جو بچوں کی نفسیات کے ڈاکٹر ہیں, ان کے ریفرنسز ہیں میری کتاب میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو قریب العمر بہن بھائی چاہیے, اس کی ذہنی گروتھ کے لیے, ذہنی نشو نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ورنہ وہ بچہ سیف کا شکار ہوتا ہے. بچے کو ماں باپ نہیں چاہیے ہوتے, بچے کو اپنے زیادہ بہن بھائی چاہیے, ماں باپ تو صرف کیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو دیکھتے ہیں نا, جب بچوں کو تفریح پہ سب کو لے کے جاؤ تو ان کی لائف ہی الگ ہوتی ہے بھائی. وہ اونٹ کو سب مل کے کھینچ رہے تھے, اکیلا ہوتا کیا کرتا وہ بےچارا اونٹ کے ساتھ. تو وہ اونٹ پہ ایسے لڑے ہیں نا, جب ہم لے کر آئے تھے بقرعید میں, وہ ایک کھینچ رہا ہے, دوسرا بیٹھ رہا ہے, تیسرا اس کے پیچھے جا کے بیٹھ رہا ہے, چوتھا وہ کہہ رہا تو کیوں کھینچ رہا ہے. تو وہ لڑ بھی رہے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو جن گھروں میں بچے ہیں آپ کو وہاں خوشیاں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ہاں, فورن میڈیا دکھا دیتا ہے باپ نے چھ بچوں کی وجہ سے خودکشی کر لی, تھا یہ ہوتا ہے چھ بچوں کا نسل. یہ میڈیا کا پروپیگنڈا, اس سے متاثر مت ہو. چار بیٹیاں تھی, کھلا نہیں سکتا تھا, ذبح کر کے بھاگ گیا. یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی نا, اس بغیرت نے ذبح کر کے ہی بھاگنا تھا. چار بھی اس کے لیے وہی ہیں جو ایک ہے, اور کوئی بچہ نہیں ہوتا بیوی کا گلا ذبح کر کے بھاگ جاتا ہی ہے. میں نے بڑے بڑے غریب لوگ دیکھے ہیں, ان کے کئی کئی بچے ہیں, لیکن مزے کی زندگی. اور پھر کمال ہے, بچے کو بالغ ہوتے ہی وہ رکشے والا اپنے بچے کی شادی بھی کر رہا ہوتا ہے. کبھی موقع ملا آپ کو بیان میں ملوا دوں گا ایسے لوگوں سے. ابے تم بولو صحیح ہو یار, نہ روزگار ہے. باپ کہتا ہے رکشے سے جب اتنے لوگ کھا رہے ہیں تو ایک بہو اور بھی کھا لے گی. ہاں, پھر ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے, پھر وہ غریبوں میں ہی شادی کرتے تو خوش ہے وہ. تو یہ دماغ سے نکال دو بھائی. گھر میں رونق چاہتے ہو, ہمیں تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے. بچے آ جاتے ہیں, دائیں بائیں نیتیں باندھ لیتے ہیں, کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی بیچ میں پیشاب کر کے آ رہا ہے, واپس جہاں سے نماز چھوڑی تھی ادھر سے ہی اسٹارٹ کر رہا ہے, دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ بڑا ایک عجیب. جب بھی میں کہیں قرآن لے کے گھر میں بیٹھوں, بچے بھی آگے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ہاں ہوں ہی ہاں شروع کر دیتے اپنی زبان میں. تو جس گھر میں بچے نہیں ہیں اس گھر میں میاں بیوی میں لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں وہ. شروع شروع کی شادی ہوتی ہے تو دلہن تھی, اب کیا کریں دلہن ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے بھائی, کس سلسلے میں حاضر ہوئے. تو ہاں, جن کو اللہ ہی نے اولاد نہ دی ہو تو وہ ان کے لیے آزمائش ہے, اللہ ان کو قیامت میں اس کا اجر دے گا. لیکن جن کو اللہ اولاد دے رہا ہو اور وہ روک رہے ہو, اپنے گھر کی خوشیاں خود ہی ختم کر رہے ہو بھائی. اور دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر کبھی نہیں کہا کرو کہ یہ ٹینشن میں. اصل میں انسان کو دوسروں کے بچے اچھے نہیں لگتے, اپنے میں مزہ آتا ہے اپنے. تو آپ کو جو لگ رہا ہے نا, یہ دوسرے کا بچہ اس نے گود میں اٹھایا کتنی ٹینشن میں ہوگا بھائی, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے. اگر آپ کا ہوتا نا تو آپ کہتے ہی تو نے کیوں اٹھایا بھائی, یہ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا. وہ انس کے گھر والے دونوں کی شادی نہیں کروا رہے, یہ کون ہے. حالانکہ دونوں دو دو دانت کے ہو گئے ہیں, خود سے شادی کرنے کی صورت میں گھر بدر کیے جانے کا خطرہ ہے, رہنمائی فرمائے گھر والوں کے لیے, دعا ہدایت فرمائے. بھائی اگر وہ کما رہے ہیں, گھر کا انتظام کر سکتے ہیں, تو اگر گھر والے نہیں کروا رہے تو کر کے بتا دیں کہ ہو گئی ہے. گھر والے گھر سے نکالیں گے نا زیادہ زیادہ, تو آپ کا اپنا گھر بن گیا تو نکال دیں, کیا خیال ہے. اور میں نے ابھی جمعے میں بھی بات سمجھائی تھی کہ لوگ کہتے ہیں خاندان ہمارا بائیکاٹ کر لے گا. ابھی چار شادیاں کر کے بچے پیدا کرو, پانچ چھ سال میں تمہارا خاندان تمہارے خاندان کا چھوٹا سا پارٹ ہوگا, تم نکالو گے پھر اپنے خاندان کو. تمہارا خاندان اتنا بڑا ہو جائے گا, خاندان تو بنتا ہی بیوی سے ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ان سے تمہیں اولادیں پوتے سب کچھ دیا اس نے, تو خاندان تو بنتا ہی بیوی سے ہے. تو اگر آپ کو خاندان نکال دیں تو چار پانچ سال کی بات ہے, نیا خاندان بنا لو, اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ کے خاندان والے آپ کے خاندان کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ یار ہم بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں, اور آپ اس خاندان کو نکال رہے ہو گے, نکلو تم میری شادی میں آئی نہیں, نکلو یہاں سے. یہ ٹینشن کی بلا وجہ کی لیوی ہے. جو آدمی کما رہا ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں, ماں باپ کی خدمت کرنا ان کے, وہ تو چاہے کما رہے ہو نہیں کما رہے ہو, وہ ساری زندگی کرنی ہے خدمت, وہ تو ویسے ہی کرنی ہے. خاندان رکھے یا نہیں رکھے تو وہ الگ گھر میں رہ کے بھی کی جا سکتی ہے. مفتی صاحب عرض ہے کہ میرا ایک بیٹا محمد عبداللہ 32 سال, پورا خاندان کا شرح نسب بیان کر دیا, ماشاء اللہ. مفتی صاحب میں شادی شدہ ہوں, میری ایک بیٹی ہے, میں جس کمپنی میں ہوں وہاں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے اور مجھے پسند ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی ہاں کرے گی یا نہ کرے گی. جب ایک جگہ اس لڑکی کی بات ہو گئی ہے تو حدیث میں صراحتن منع ہے کہ کسی کے پیغام پہ پیغام نہ بھیجا کرو, کباب میں ہڈی نہ بنا کرو, بالکل ناجائز ہے. جب اس کی بات ہو گئی ہے تو بس دماغ ہٹا لو وہاں سے, کہیں اس کو پیغام بھی نہ بھیجو, کوئی بات نہ کرو اس سے. نماز میں الٹے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور ویسے نارمل کیا لکھا ہے روٹین میں نہیں نکلتے, صرف نماز میں ہی نکلتے ہیں, کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں کیا جائے, نکلنے دیں. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں کہ سیدھی آنکھ سے بھی نکلے, یہ چاہ رہے ہیں؟ جس انسان کا کو غصہ زیادہ آتا ہو تو وہ اپنے غصے پہ کیسے قابو کرے؟ غصہ آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک فزیکلی کچھ انفٹ ہوتا ہے آدمی, اور بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے یا ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی. تو جو تکبر ہے, برداشت ہی نہیں ہے, اس کا علاج تو یہ ہے کہ سوچے کہ ہم توازو پیدا کریں بھائی اپنے اندر, جب بھی غصہ آئے تو جرمانہ دے, کوئی سزا دے اپنے آپ کو, سزا متعین کرے کہ جب بھی میں ہائپر ہوں گا تو کچھ اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ یہ بات بات پہ ہائپر نہ ہو جائے کروں گا. اور کچھ کمزوری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نیند پوری نہیں ہوتی. میری نیند پوری نہ ہو میری تو کھوپڑی کام نہیں کرتی ہوتی, اس لیے میں نیند کو بہت فوکس کرتا ہوں, نیند لازمی پوری کرنی ہے. تو نیند پوری نہیں ہوئی بعض دفعہ آپ کی, یا آپ کو کوئی کمزور ہے, کمزور آدمی کو بہت غصہ آتا ہے, کر کچھ نہیں سکتا, کانپتا رہتا ہے غصے, اپنے آپ کو ہی کھا کے ختم کر دیتا ہے غصے میں. تو اس لیے جم جاؤ, جاگنگ کرو, خوراک ٹائٹ رکھو. صحت مند آدمی کو جلدی غصہ نہیں آتا, نارمل رہتا ہے, خوش رہتا ہے, ہیلو ہائے ہائے فائن چھو چھو. بچے زیادہ ہوں تو بھی آدمی خوش رہتا ہے, حقیقت ہے, کیونکہ بچے بہت مینٹلی ہیلتھ کا ذریعہ بنتے ہیں, خوش رکھتے ہیں انسان. گھر جائے گا ہر بچہ بندر کی طرح نہ کہیں اپنے ایک الگ کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. اب میں دو بچوں کو دعوت میں لے گیا, وہ کسی نے گفٹ دے دیے, تو ایک بچے کو, وہ چھوٹا بچہ بالکل اتنا پدا سا, وہ اس کو ویسکوٹ دے دی اور ایک گفٹ کا ڈبا, وہ بھائی اس کی تو چال ہی چینج ہو گئی, ایسے چل رہا ہے. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا. بچوں کی ہر حرکت اچھی لگتی ہے, بشرطے کہ خود انسان کی کھوپڑی صحیح ہو. خود ہی فرعون بنا ہوا ہے تو پھر تو بچے اس کو برے لگیں گے. معلوم ہے تکبر ہوتا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, ایک سردار تھے اپنی قوم کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو پیار کیا نا, اس نے کہا کہ میں تو اپنے, میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک کبھی کسی کو پیار ویار نہیں کیا ہے. دماغ سردار تھے تو بھائی ہم بچوں کو کیوں پیار کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. دیکھو ہمارے نبی سے بڑے سردار تو نہیں تھے نا وہ, آپ سے بڑا تو کوئی سردار پوری کائنات میں, اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بچوں سے پیار کر رہے ہیں, گود میں بٹھا رہے ہیں, اپنی پشت پہ بٹھا رہے ہیں, خطبہ گود میں دے کے پڑھایا آپ نے, نماز میں اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی. تو انسان توازوں کے ساتھ زندگی گزارے, خود بھی انجوائے کرتا ہے لائف کو, دوسرے اور مکھی بٹھا کے رکھے گا نا, مجھے ایکچولی ریسپیکٹ. آخری بات, داماد دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جب سسرال میں آئے گا نا, سسرال والوں کے لیے ٹینشن بن کے آئے گا کہ ان کو ریسپیکٹ دو. میری ایک جگہ شادی ہوئی بھی ہے ابھی بھی, یعنی ہوئی نہیں تھی, ہوئی بھی ابھی بھی باقی ہے, نام نہیں بتاؤں گا ان کے یہاں. جب میں جاتا نا, اب تو میں جاتا بہت کم ہوں, ٹائم نہیں ہے, پہلے تو سسرال بہت جانا ہوتا تھا. تو میں کوئی توازوں میں نہیں کہہ رہا, میری عادت ہی نہیں ہے کہ کھلا دیا ٹھیک ہے, نہیں کھلایا تو چلو نہیں کھلایا, کچھ بھی کھلا دیا کھا لیا, اگر کچھ پسند ہے تو بتا دیا. میری عادت تھی, میں جاتا تھا بیٹھتا تھا, کہیں جگہ مل گئی ٹھیک ہے بھائی, ہم تو اپنے خرچے پہ ہیں نا, نہیں کھلایا تو جا کے کھا لیں گے نا, بارش میں کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کھاؤ بیٹا یہ کھاؤ, لسی پہ تو اتنی بڑی لسی کا گلاس لا کے رکھ دیتے تھے, وہ اس کے پینے کے بعد کوئی کھانچا بچتا ہی نہیں آدمی کا. تو خیر, تو ان کے گھر میں ایک اور داماد آ گیا, ان کو پتا چلا داماد کتنی بڑی ٹینشن ہوتا ہے. جب ہماری سالی کی شادی تو ایک اور داماد آ گیا, وہ داماد آ کے بیٹھتا تھا, مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا, مجھے کسی نے, ایسے بھی ہوتے ہیں, ایک ریلیٹو تھے ہمارے, ان کے بھی وہ عجیب ٹینشن یار, وہ بہنوئی تھے کسی کے, جب ان کے گھر میں جاتے تو ایک دن میں بھی بیٹھا ہوا تھا, میری موجودگی میں آ گئے, آدھے گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی پوچھا ہی نہیں کسی نے, نہ چائے کا نہ پانی کا, آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہو, मैंने कहा मुझे भी नहीं पूछा तो मैं इनको कैसे समझाऊंगा, तो तुम हम दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए। मैंने कहा पी लो जाके, कूलर रखा हुआ है पानी पी लो यार, और अगर पूछा नहीं है तो खुद मुंह से फूट दो यार, चाय चाहिए हमें, मुंह से फूटते हुए क्या जा रहा है, क्या जा रहा है इसमें भाई। मैं तो बोल देता हूँ यार कुछ चाय मिल जाएगी भाई मुझे। वो नादिर अली का ना क्लिप देखा होगा आपने, नादिर अली कह रहे हैं मुफ्ती साहब खाना खा के जाएंगे या बगैर खाने के। मैंने कहा खा के जाऊंगा, भूख लग रही है। वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, वो कह रहा था खाना खाना है, मैंने कहा भूख लग रही है खिला दे भाई तू। तो इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, भूख से भूख लग रही है बोल दो यार। अगर अगला बोल दे नहीं खिला सकता तो बोले फिर पूछा क्यों था, बोल तो पूछो ही नहीं फिर। तो मेरी आदत ये है जाके मैं खुद ही बोल देता हूँ यार कड़क सी चाय दे दो या खाना दे दो या फलाना दे दो, बोल दो यार। तो वो आके मुझे पूछा नहीं है मेरे तो यहाँ को, हर वक्त उनका ससुराल में ना फड्डा ही होता था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहीं शादी वादी की, हाँ उन्होंने क्या मैंने ही शादी की थी मुझे याद आया, कोई दूसरी थी पता नहीं तीसरी थी। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मेरा वलीमा है आप तशरीफ ले आइए। ये कोई तरीका नहीं होता दावत देने का, कार्ड होता है कार्ड, मुझे कह रहे हैं कार्ड होता है बाकायदा। अब इतना पुराना किस्सा है और नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है, क्योंकि मेरी शादी को भी बहुत टाइम हो गया ना, वो वाली शादी को जिसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अगर वो उनको समझ भी गए ना तो मैं बोलूंगा ये वाली नहीं अगली वो दूसरी वाली शादी थी, हमारे पास इतनी शादियां हैं कि कोई भी फिट कर सकते हैं हम, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। किसी अगर साले को बुरा लगे कि मेरी बात हो रही है तो किसी और पे डाल दूंगा, तो तेरी थोड़ी, इतने साले भी इतने सारे हैं हमारे पास। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह नजर बस से बचाए। खैर तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा वलीमा है आप तशरीफ ले। उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं होता, कार्ड होता है कोई तमीज से इन्विटेशन होती है। तो मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा मैंने कहा दिल में सोचा आना है आजा वरना बैठा रहे वहां पे, सबको कार्ड दे रहे होते तो तुझे भी दे देते भाई, नहीं दे रहे हम फोन पे ही चला रहे हैं सबको। तो जब इंसान की ये नाक पे पक्की भी ऐसे होते हैं, हर सोसाइटी में हर खानदान में एक दामाद सड़ावा होता है, जब आएगा ना आदमी कहेगा कमबख्त को रिस्पेक्ट दो बेगैरत को। अब बेटी दी हुई है जाहिर है इज्जत देनी पड़ती है उस हबीज को, दिल नहीं चाह रहा होता लेकिन आदमी बेटी की खातिर उसको या बहनोई को इज्जत दे रहा होता है बहन की खातिर है। हर खानदान में ये अच्छे लोग नहीं होते, ना टेंशन लो ना टेंशन दो यार, जब कमाता है ना आदमी अपना तो क्यों किसी का मोहताज है भाई। तू इज्जत मिल गई ठीक है, नहीं मिली बेइज्जती ना करें, बस इतना काफी है, बेइज्जती ना करें, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इज्जत नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो नाक पे मक्खियां बिठा के रहते हैं ना, ये दूसरों को कम टेंशन देते हैं, खुद डिप्रेशन में घुल घुल के खत्म हो जाते हैं, एक दिन अटैक से इंतकाल आ जाता है, जी ब्रेन हैमरेज से हजरत का इंतकाल हो गया। तो तकब्बुर बहुत बुरी, शैतान ने तकब्बुर किया था, फुल टेंशन में आ गया, कह देता अल्लाह कह रहे हैं सजदा कर ले, नहीं दिल चाह रहा था, एक दफा सर झुका देता हमें भी जहन्नम में जाने से बच जाते, कम बहुत खुद भी बच जाता, इज्जत हो जाती तेरी यार, अकड़ते अकड़ता चला जा रहा है और जाएगा भी जहन्नम में भी बड़े फड्डे होंगे शैतान के साथ। कुरान कहता है लोग कहेंगे तूने मरवाए हमें, शैतान कहेगा मैं तो खुद मर रहा हूं भाई, तुम्हें मैं कहां से तुम्हें मरवाऊंगा। तो तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, नॉर्मल रहना चाहिए, समझ रहे हो, तवाज़ो के साथ रहना चाहिए, नाक पे मक्खी नहीं बिठानी चाहिए। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो वो काफी हो गया।